हरे कृष्णा।
तो आज का जो सेक्शन है वो है द क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मणा, ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुण। तो ब्राह्मण बनने का अर्थ यही है कि हम लोग सत्वगुण में स्थित हों और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हम लोग ऊपर उठें, सत्वगुण में स्थित हों। श्रीमद् भागवत में लिखा है तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चे एत चेतेरनाविद्धं सत्वं स्थिते प्रसीदति, सत्वं स्थिते प्रसीदति। तो सत्वगुण में स्थित होना है, ये बड़ा आवश्यक है। और भक्ति मार्ग में भी अगर हम निष्ठा के स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए सत्वगुण का होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए प्रभुपाद ने इतना जोर दिया कि हम लोग चार नियमों का पालन करें, और इन चार नियमों के पालन करने से हमारी चेतना में सत्वगुण जागृत होता है, सत्वगुण जागृत होता है। किसी के प्रति हम लोग नम्रता प्रकट करते हैं और किसी के प्रति हमारे अंदर दया की भावना होती है, तो ये सब सत्वगुण का लक्षण है। वो हम लोग भगवद गीता के आधार पर आज चर्चा करेंगे। जो नौ गुण बताए हैं गीता में भगवान कृष्ण ने, चार वर्णों के बारे में भगवान ने वर्णन किया है गीता में, और यहाँ पे ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं। शमो दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो भगवान को ब्राह्मण क्यों प्रिय है? भगवान को ब्राह्मण इसलिए प्रिय है क्योंकि ब्राह्मण स्वच्छ रहते हैं, है ना, उनका हृदय निर्मल होता है। ब्राह्मण का हृदय द्वेष से भरा नहीं होता, इसलिए महाप्रभु ने जब देखा अमोगा द्वेष के कारण अपराध कर रहा है और बाद में अमोगा को हैजे का रोग हो गया, तीन दिन के उपरांत चैतन्य महाप्रभु अमोगा के घर पे गए और अमोगा के छाती पर हाथ फेरते हुए महाप्रभु ने कहा कि तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारे हृदय में द्वेष कहाँ से आया? तो ब्राह्मण जो है वो द्वेष से रहित होता है, और ये भगवान को बड़ा प्रिय है। भगवान को ये इस प्रकार की जो भावना है अति प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु जब गया जा रहे थे अपने पिता के श्राद्ध के लिए, और कई उनके साथ में उनके पार्षद भी जा रहे थे, तो रास्ते में महाप्रभु को बुखार हो गया, महाप्रभु को बुखार हो गया चैतन्य महाप्रभु को। तो उन्होंने फिर अपने पार्षदों से कहा कि मेरा ये बुखार ठीक होगा जो पास में निकट में जो ब्राह्मण है उनका चरणामृत का अगर पान करूंगा मैं तो मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन महाप्रभु के संप्रदाय में जो हमारे गुरुवर्ग हैं, आचार्य लोग हैं, वो जन्म से नहीं बल्कि गुणों के आधार पर ब्राह्मण को परखते हैं, या ब्राह्मण का आदर सत्कार किया जाता है उसके गुणों के आधार पर। हमारे कई आचार्य हैं जिन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया, राजघराने में जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया, क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया, लेकिन वैश्य परिवार में जन्म लिया, लेकिन बाद में फिर वो हमारे आचार्य हुए हैं, वैश्य आचार्य हुए हैं। तो इस वजह से ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि हमारे जितने भी परंपरा में आचार्य हैं वो सभी ब्राह्मण परिवार से नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण वैष्णव आचार्य हुए। प्रभुपाद जी ब्राह्मण परिवार में उनका नहीं था जन्म, वैश्य परिवार में। भक्तिवत ठाकुर का भी जन्म है जो ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ, और उनके सुपुत्र तो उन्हीं के परिवार के हैं। तो लेकिन यही आचार्य, इन्हीं आचार्यों ने जो है महापुरुष की भविष्यवाणी को सत्य किया है, ये ब्राह्मण परिवार से नहीं थे। तो इस वजह से कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भगवान का भक्त है तो उसमें सारे गुण आ जाते हैं। फिर यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरः, हरो भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो भई। तो जो भगवान कृष्ण का भक्त है उसमें सभी देवताओं के गुण आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है वैश्य बनने से पहले ब्राह्मण बनने का, कि हम लोग ब्राह्मण कैसे बने। वैश्य बनने के लिए और अधिक प्रयास करना पड़ेगा, वैश्य बनने के लिए और अधिक प्रयास करना पड़ेगा। वैश्य का मतलब है जो मिथ्या अहंकार से रहित। वैश्य बनना साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। तो कोई वैश्य बनना चाहता है तो फिर उसको कोई भी कार्य करने के लिए तैयार होना होगा। वैश्य बनने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये आगे किससे मिलेगी? उसको गुरु से मिलेगी। तो गुरु जो शिष्य को प्रशिक्षित करते हैं भक्ति मार्ग में, तो उनका उद्देश्य केवल शिष्य को ब्राह्मण बनाना नहीं होता, बल्कि शिष्य को वैश्य बनाना होता है। गुरु चाहते हैं कि प्रत्येक शिष्य जो है उनका वो वैश्य बने। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए हम सब वैश्य बनने का प्रयास करें। अभी हम सब वैष्णव जैसे दिख रहे हैं, आप में से कुछ हो सकते हैं वैष्णव, हम किसी को परख नहीं रहे अभी, लेकिन अधिकांश हम लोग क्या है, वैष्णव प्राय। वैष्णव प्राय मतलब क्या है? वैष्णव जैसे हम दिखते हैं, वैष्णव और वैष्णवतर और वैष्णवतम। अभी हम वैष्णव जैसे दिखते हैं तो पूरी तरह से वैष्णव नहीं बने। पूरी तरह से वैष्णव क्योंकि नहीं बने हैं, इसलिए हमारे आचार्यों ने देवी वर्णाश्रम धर्म के ऊपर जोर दिया, शुद्धिकरण के लिए, ये प्यूरिफिकेशन के लिए है। वर्णाश्रम धर्म हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ब्राह्मण बनना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? गोपी भर्तुर पद कमले और दास दासानुदास, ये चैतन्य महापुरुष ने कहा है। महापुरुष ने कहा ना मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य, ना शूद्र, ना ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी, मैं तो गोपी के जो भर्तु है उनके दास का दास का दास का दास। गोपी भर्तुर पद कमले और दास दासानुदास, तो ये हमारा लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है। लेकिन क्योंकि हम लोग उस स्तर पर नहीं है अभी, इसलिए हमें इस देवी वर्णाश्रम धर्म से गुजरना होगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने और उनके पिता श्री भक्तिनाथ ठाकुर, इन सब ने यही इच्छा प्रकट की कि देवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना हो। और प्रभुपाद ने तो इसको किया ही पूरे विश्व स्तर पर। तो इस प्रकार प्रभुपाद की बड़ी प्रबल इच्छा थी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने की। तो एक तरह से तो आश्रम तो दिखाई पड़ते ही हैं हमारी संस्था में, हम देखते हैं ब्रह्मचारी आश्रम भी देखते हैं, गृहस्थ आश्रम भी देख रहे हैं, सन्यासियों को भी देख रहे हैं, लेकिन वर्ण की स्थापना होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि उस तरह से हमें कार्य करना हो। और ऐसे करते करते साथ में अपनी सेवाओं को जब गुरु को भगवान को अर्पित करेंगे तो क्रमशः शुद्धिकरण होगा और धीरे धीरे हम लोग भी वैष्णव के धरातल पर पहुंचेंगे। तो आज हम लोग ये जो 9 गुण हैं भगवद गीता में जो दिए भगवान ने बताए हैं, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला भगवान बता रहे हैं क्षमा, पीसफुलनेस, क्षमा यानी कि शांति। शांत मतलब कहने का अर्थ यह है, क्षमा का अगर कोई स्रोत है, अगर हम चाहते हैं हमारे हृदय में क्षमा की भावना आए, तो उसका स्रोत क्या है? शांति, पीसफुलनेस। और कब हम लोग शांत हो सकते हैं जानते हैं? कब हो सकते हैं? क्या बताया कविराज गोस्वामी ने? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। कृष्ण भक्त क्योंकि निष्काम होता है इसलिए वो शांत होता है। जब तक भौतिक कामनाएं रहेंगी तब तक हम लोग शांत नहीं हो सकते, अशांति बनी रहेगी मन में, चिंताएं रहेंगी, चिंताओं से घिरे रहेंगे। तो इसलिए जब हम लोग एहसास करते हैं और अनुभव करने लगते हैं कि मैं नियंता नहीं हूं, वास्तव में परम भगवान कृष्ण ही नियंता है, तब वास्तविक शांति की अनुभूति हो सकती है। शांति हमें तभी प्राप्त होगी जब यह अनुभव हम करेंगे कि मैं नियंता नहीं हूं, भगवान कृष्ण नियंता है। मान लीजिए कि आपको मंदिर का अधिकारी बनाते हैं, या किसी डिपार्टमेंट का हेड बनाते हैं, या कोई लीडर बनते हैं आप किसी भी एरिया में, या अपने ऑफिस में भी आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट में आप, और आपके अंडर बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, और हमारे अंदर नियंता की भावना है, हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसे ही हो, क्योंकि हम लोग भीतर से सोच रहे हैं हम कंट्रोलर हैं, है ना, हम बटन दबाएंगे जैसे ही तो वो व्यक्ति आएगा पानी लेकर, है ना। तो एक आपको घटना बताते हैं, एक थे वो जानते हैं जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, तो उनसे पूछा कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है आप कैसे चलाते, आप तो कोई इतने प्रोफेशनल नहीं लगते हैं, आप देखने में इतने प्रोफेशनल तो नहीं लगते हैं, लेकिन आप इतना बड़ा बिजनेस कैसे चला रहे। बोलते हैं मेरे कुर्सी के पास बहुत सारे बटन लगे हैं, मैं एक बटन दबाता हूँ तो इंजीनियर आता है, दूसरा बटन दबाता हूँ तो फिर एक क्या कहते हैं अलग अलग प्रोफेशनल लोग आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, डॉक्टर्स आते हैं सिर्फ बटन दबाने से। तो बनिया परिवार के लोग जो है वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स को खरीद लेते, भले वो खुद शिक्षित ना हो, और क्योंकि उनके पास अपार धन होता है तो जितने क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उनको सबको परचेज कर लेते हैं वो, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, है कि नहीं, और वो बड़ी शांति से रहते तो कहने की तो एक उदाहरण है, बौद्धिक उदाहरण है, हालांकि ये ठीक उदाहरण नहीं है, लेकिन बताने के लिए कि लोग किस तरह से कार्य करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति अगर शांत रहना चाहता है तो उसको इस बात पे ध्यान रहना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल पे जोर देना पड़ेगा, जैसे प्रभुपाद ने कहा लेजी इंटेलिजेंट, भक्त को लेजी इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा शांत शांत रहने के लिए। अलग अलग प्रकार के लोग प्रभुपाद ने बताया, बिजी फूल बिजी इंटेलिजेंट, है ना, बिजी फूल बिजी इंटेलिजेंट, और क्या है, लेजी फूल। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि हमें भक्त को क्या होना चाहिए, लेजी इंटेलिजेंट होना चाहिए, अजागर वृत्ति, लोग मेहनत करके पार्क बनाए और हम लाभ उठाएंगे, प्रभुपाद ही बोलते थे। अजागर वृत्ति का अर्थ है जैसे पाइथन होता है, वो लेटा हुआ है जंगल में, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही जानवर निकट आता है वो अपना मुंह खोल लेता हो। तो ये ब्राह्मण वैसे ही करता है बिल्कुल, ब्राह्मण देखने में लगेगा कुछ नहीं कर रहा, क्या है बैठा हुआ है पूरे दिन बैठ के पाठ कर रहा है, किताब खोल के बैठ जाता है, कोई सेवा नहीं है इसके पास, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसका जो दिमाग है ना उसी से वो संसार चला रहा है। बड़े बड़े राजा महाराज आए गए, ब्राह्मणों का राज्य चलता रहा महाराज वेण ने आतंक मचा दिया पूरे पृथ्वी में, आसुरी प्रवृत्ति का था वो, महाराज वेण ने उत्पाद मचाया, पृथ्वी का शोषण किया, पृथ्वी जो है उपजाऊ नहीं रह गई, ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आया और ब्राह्मणों को तंग करता, यज्ञ भी जो है नहीं करने देता उनके लिए, और इस कारण से ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने सोचा कि हमें अब राजा को बदलना पड़ेगा, राजा हमारी बात नहीं सुन रहा है तो राजा को बदलना पड़ेगा। कैसे बदला, मंत्रोच्चारण से, मंत्रोच्चारण से महाराज वेण को समाप्त कर दिया। ब्राह्मणों में यह शक्ति थी, आजकल तो खैर ब्राह्मणों में शक्ति नहीं है, इसलिए राजा जो है घूम रहे हैं बिना डर के। तो ब्राह्मणों के पास ये आध्यात्मिक शक्ति होती थी, दुर्वासा मुनि किसी के घर चले जाए तो राजा अपने आप खड़े होकर द्वार पर आके स्वागत करते थे, विश्वामित्र मुनि आए हाँ, तो खुद जो आए जाएंगे लेने के लिए। तो विश्वामित्र मुनि आए हैं, दुर्वासा मुनि आए हैं, वशिष्ठ मुनि आए हैं, तो राजा स्वयं जाएगा स्वागत करने के लिए। वशिष्ठ मुनि आते या विश्वामित्र मुनि आते, महाराज दशरथ स्वयं जाकर उनका स्वागत करते, उठ खड़े होकर। लेकिन आजकल ब्राह्मणों को कौन पूछता है, क्योंकि ब्राह्मण है ही नहीं तो पूछेगा कौन। तो इसलिए कलौ शूद्र संभव, स्कंद पुराण में दिया है कलौ शूद्र संभव, कलयुग में शूद्रता की प्रधानता है, समझने का प्रयास करिए, बुरा मत मानिएगा। कलौ शूद्र संभव, शूद्र का मतलब है ये है मशीन एज, ब्राह्मणों का मशीन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वैश्यों को हर प्रकार का कार्य करना होता है। अगर गुरु शिष्य को लगाए किसी एरिया में जहाँ पे टेक्निकल एरिया है और टेक्नीशियंस की आवश्यकता है, इंजीनियर्स की आवश्यकता है, तो गुरु के आदेश अनुसार जब शिष्य करता है तो शिष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो शूद्रों का कार्य है, या झाड़ू में सेवा में लगाया जाता है गुरु के द्वारा तो ये ना सोचे मुझे तो शूद्र की सेवा दे दी है। जब गुरु के द्वारा कोई भी कार्य दिया जाता है वो आध्यात्मिक धरातल पर होता है। इसलिए अर्जुन का युद्ध करना भी कुरुक्षेत्र में वो क्षत्रिय का कार्य नहीं है, वो एक भक्त का कार्य है। अर्जुन का युद्ध करना कुरुक्षेत्र में भक्ति है, कर्मयोग नहीं है, या निष्काम कर्म योग भी नहीं है, शुद्ध भक्ति है, क्योंकि वो कार्य वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। इसलिए भक्त अगर भौतिक कार्य भी करता है गुरु के आदेश अनुसार बाहर रहकर भी, वो कार्य भौतिक कार्य ना होकर आध्यात्मिक कार्य हो जाता है। तो ब्राह्मण जो है उनके पास ये आध्यात्मिक शक्ति होती थी, लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि जैसे प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों नहीं बनते, आप प्रभुपाद ने कहा मैं क्यों बनूं राष्ट्रपति, मैं राष्ट्रपति का गुरु बनना चाहता हूं। तो ये है, तो बेसिकली क्या है कि प्रभुपाद भी बिल्कुल ऐसे ही थे, है ना। अगर आप प्रभुपाद का डेली स्केड्यूल देखें तो प्रभुपाद 1 घंटा वॉकिंग में जाते थे, 1 घंटा प्रभुपाद मसाज करवाते थे, टाइम पे प्रभुपाद प्रसाद लेते थे ना। कोई कहेगा नहीं देखिए कि प्रभुपाद वर्ल्ड वाइड मूवमेंट चला रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके शिष्य बहुत शरणागत थे, ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन प्रभुपाद का जो दिमाग है, प्रभुपाद है जीनियस, है ना। ब्राह्मण के तो सारे गुण हैं ही, और क्योंकि वैष्णव हैं तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रभुपाद वैष्णव होने के नाते हर प्रकार का कार्य कर पाते थे, वैष्णव हर प्रकार का कार्य कर सकता है। प्रभुपाद मैनेजमेंट भी करते थे, प्रभुपाद कंस्ट्रक्शन भी करवा रहे थे, प्रभुपाद प्रीचिंग भी करते थे, है ना, प्रभुपाद कुकिंग भी जानते थे, प्रभुपाद म्यूजिक भी जानते थे, ऑलराउंडर। वैष्णव कोई भी कार्य कर सकता है, क्योंकि भगवान की कृपा होती है वैष्णव के पास। तो वैष्णव के धरातल पर पहुंचने से पहले हमें पहले सबसे पहले ब्राह्मण बनने का प्रयास करना होगा। तो हम लोग जब इस बात का एहसास करने लगेंगे कि हम लोग गुरु या भगवान के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं और हमें चलना है उनके मार्गदर्शन में, तो आपके हृदय में शांति होगी। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है गुरु के द्वारा, और उसके बाद हम क्या समझते हैं, कर्ता हम इति मन्यते। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विहूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। शूद्र का मतलब क्या है, देहात्मक बुद्धि। शूद्र का पहला क्वालिफिकेशन है बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, देहात्मक बॉडीली कॉन्शियसनेस। तो बॉडीली कॉन्शियसनेस जो होता है, देहात्मक बुद्धि जो है, ये शूद्र का सबसे पहला लक्षण है, जो अपनी पहचान शरीर से करता है। तो कलयुग में तो ऐसे ही है, इसलिए बोला है कलौ शूद्र संभवा। लेकिन जो ब्राह्मण है वो क्या है, देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयास करता है। इसलिए ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है, कि वो जानता है कि शरीर से परे और भी कुछ है, ये ज्ञान उसको होता है, इस कारण से उसको ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता है। तो कर्ता हम इति मन्यते, तो हम क्या सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, है ना, हम ये डिपार्टमेंट चला रहे हैं, या हमारे वजह से ये सफलता प्राप्त हुई है, है ना। हम गुरु की कृपा भूल जाते हैं, इसलिए क्या है, हमेशा हम क्या रहेंगे, अशांत रहेंगे। और उस नियंता की भावना में अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो क्रोध आएगा, है ना। क्रोधात, क्रोध क्या आता, क्यों आता है, क्रोध आता है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस ते शुभ जायते संजात संजायते कामान कामात क्रोध अभी जायते। भगवान गीता में इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हमारी, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हमारे अनुसार नहीं चल रहा है ये डिपार्टमेंट, हमारे अनुसार ये प्रचार नहीं चल रहा है, हमारे अनुसार जो है ये सेवाएं नहीं चल रही हैं, तो फिर क्या होगा, क्रोध आएगा। और ये जो क्रोध आता है रजोगुण और तमोगुण के कारण आता है। और जहां हम लोग श्रेय गुरु को देते रहेंगे और गुरु के अनुसार कार्य करते रहेंगे, भले वो ठीक लगे या गलत लगे, अगर उसका हम पालन करते रहेंगे तो फिर आप देखेंगे धीरे 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 आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, और आप जल्द ही बहुत कम समय में सतगुण के स्तर पर आ जाएंगे। सतगुण ही बांधता है संसार में, वास्तव में सतगुण में आना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मान लीजिए आपको, आप जेल में हैं और आपको सोने के चेन से बांध दिया जाए। भक्त ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं, एक को सोने के चेन से बांधा जा रहा है, दूसरे को चांदी के, और तीसरे को लोहे का चेन। सोने का चेन पहना, बोलते गोल्ड चेन है मेरे, है ना, तुमने तो लोहे का चेन पहना हुआ है। बंदा वो भी है, लेकिन वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है। ट्रेन में बैठे हैं, एक एसी कोच में बैठा है, एक थर्ड क्लास में बैठा है या सेकंड क्लास में बैठा है, इंजन नहीं है गाड़ी में, बोलते मैं इसी कोच में बैठा हूँ, देखिए कितनी सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारे यहाँ पर एमिनिटीज फैसिलिटीज है, हर दो मिनट में कुछ ना कुछ यहाँ पर वेटर लेके आता रहता है, वेज भी मिलता है नॉन वेज भी मिलता है, कितने सारे यहाँ पर एडवांटेजेस हैं एसी कोच में बैठे हम लोग। लेकिन अगर गाड़ी प्लेटफॉर्म से चलेगी नहीं तो फायदा क्या एसी कोच में बैठने का, अब वहीं पे खड़े हैं स्टेशन में खड़े हैं। लेकिन एक अंदर से एक क्या है स्पेकुलेशन, एक कल्पना है कि हम लोग सुपीरियर पोजिशन में है क्योंकि मैं एसी कोच में बैठा हूं। इसी तरह से फ्लाइट में कोई बैठा है, कोई इकोनॉमी क्लास में बैठा है, कोई बिजनेस क्लास में बैठा है, एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठा है, सब बैठे हुए हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में, जूस आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, सामने टीवी लगा हुआ है, पांव फैला के आप बैठ सकते हैं, लेट भी सकते हैं, एयर होस्टेस भी हर दो मिनट में आपके पास आ रही है, तो आप बड़े खुश हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में आप बैठे। लेकिन फ्लाइट तो वहीं पे खड़े, आपकी प्लेन तो वहीं खड़ी है, आगे एक इंच पे मूव नहीं किया, अभी भी जमीन पे है, अभी भी जमीन पे है। एक और उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए आपको वीजा भी मिल गया और आप एयरपोर्ट भी पहुंच गए ऑलमोस्ट ट्रैफिक से गुजरते हुए, लेकिन जब पहुंचे तो पता चला कि फ्लाइट आपकी चली गई, तो कहां पे रह गए आप, एयरपोर्ट में रह गए। वो देखिए आपका प्लेन मुंह जा रहा है ऊपर, आप तो नीचे ही रह गए। वो तो मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की है, मेरा वीजा लगा हुआ है, 5 साल का मुझे वीजा मिला है, सब कुछ मिल गया है, क्यों मुझे नहीं जाने दे रहे आप। बोलते तो प्लेन तो चली गई, फ्लाइट तो चली गई, आप इधर ही रह गए। तो कहने का अर्थ है कि सत्य गुण में भी अगर हम पहुंच गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि अभी भी हम जमीन पे हैं, अभी भी इसी शरीर में है, देहात्मक बुद्धि है वो भी एक तरह से। लेकिन रजोगुण और तमोगुण से हम लोग बेटर सिचुएशन में है। तो कर्ता की भावना जो है सत्व गुण में कम हो जाती है, कहने का तात्पर्य होता है लेकिन कम हो जाता है। सत्व गुण में एक सुख प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है दूसरों का कल्याण करके, दूसरे के प्रति दया दिखा के, अंदर से एक सुख की अनुभूति होती है कि देखो मेरे हृदय में कितनी दया है, है ना, मेरे हृदय में कितनी दया है। तो उस गुणों के कारण जो है वो बनने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि देखिए मेरे अंदर अच्छे अच्छे गुण है तो कितना अच्छा हूं मैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म अहंकार भरा रहता है तो गुण उसके ऊपर उठ नहीं पाता है, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो कितने भी अच्छे गुण हो अपने आप को बहुत नीच मानते हैं। जगाई मदाई हुए थे पापिश पूरी शेरे कीट हुए थे मुई से लगिष्ट, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं जगाई मदाई से भी ज्यादा पापी हूं मैं, और मल में जो कीड़ा पड़ा है उससे भी ज्यादा गिरा हुआ हूं, कोई मेरा नाम भी ले लेगा तो उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वैष्णव ऐसे सोचता है। लेकिन जो सत्व गुण में है वो थोड़ा सा अच्छा कार्य करता है उसके अंदर एक सुख की भावना जागृत होती है, वाह क्या आज कथा की मैंने, भगवान कृष्ण का कितना अच्छा गुणगान किया मैंने क्योंकि सत्व गुण बांध रहा है कहीं ना कहीं, सत्व गुण कहीं ना कहीं लगा हुआ है पीछे आपके। तो इस प्रकार इस सत्व गुण को भी समझना है अच्छी तरह से, गुणों को ठीक ठीक से समझने लग जाएंगे तो उससे बड़ा लाभ होगा। कोई अगर वैष्णव के धरातल पर कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता 24 घंटे, तो कम से कम उसको रजोगुण और तमोगुण में नहीं आना चाहिए, सात्विक कार्य कर लेना चाहिए, कमरे में झाड़ू लगा लिया या स्नान कर लिया या फिर जपो वॉक में चले गए, गार्डन में चले गए थोड़ा सा, तो ये सब कुछ सात्विक कार्य हम कर सकते हैं, सात्विक कार्य कर सकते हैं। तो उससे ये लाभ होगा कि कम से कम रजोगुण और तमोगुण में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है कि बहुत 6 घंटे मैंने लगातार श्रवण कर लिया है, बहुत हो गया आज के लिए, इतना काफी है, एकादशी मैंने आज 64 माला कर ली, अब नहीं करूंगा और माला। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि 64 माला करने के बाद हम सोने चले जाए, तो 64 माला करने के बाद हमने क्या किया, फिर अपने शरीर में मिट्टी डाली, कुंज रहा शौचवत, है ना। इसलिए बड़ा अच्छा बताया था हमारे एक यशोलेन्द्र राधा गोविंद महाराज ने, यशोलेन्द्र राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि वास्तव में भक्त की पहचान होती है, भक्त का पता चलता है कि उसका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड क्या है प्रातः काल के कार्यक्रम के बाद, क्योंकि सुबह तो पैकेज प्रोग्राम मिला हुआ है सबको, आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो है दिन भर क्या करता है वो उसके लिए टेस्टिंग पॉइंट है। तो इसलिए अगर कोई पूरी तरह से एंगेज नहीं हो पाता है कृष्ण भावना में या सेवा में, तो उसको सात्विक कार्य कर लेना चाहिए, जिससे क्या है कि कम से कम रजोगुण और तमोगुण में नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स ये संभव नहीं होता जब विशेष रूप से आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, जैसे भी है, तो आप प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। लेकिन जब भी आपको समय मिले उन कार्यों से, जब आप फ्री हो जाते हैं, तो हमें फिर इस तरह से ऐड करना चाहिए कि हम लोग कम से कम रजोगुण और तमोगुण में ना जाएं। तो ये हमने जो बताया, पीसफुल कैसे हो सकते हैं, है ना, शांति कैसे आ सकती है, शांति आ सकती है, अपने आप में हर टॉपिक जो है ना अपने आप इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहे हम। इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि भक्त जो होता है उसकी मति कृष्ण में होती है, वो अपने आप को कभी नियंता नहीं मानता है और सारा श्रेय वो गुरु को और कृष्ण को देता है। कई बार होता है भक्तों के साथ, भक्त लोग फैसला करते हैं, योजना बनाते हैं प्रचार का, कई प्रकार की प्लानिंग करते हैं, गुरु महाराज आते हैं, बदल देते हैं सब कुछ, अहंकार को चोट पहुंचती है कि हमने इतनी मेहनत की, हमने इतना प्लानिंग किया, महाराज ने आके क्या किया, उसको चेंज कर दिया। चोट पहुंचती है कि नहीं, सटल रूप में सबको चोट पहुंचती है, बाहर से बताएगा नहीं भाई, अंदर से चोट पहुंचती है। हमने इतनी प्लानिंग की, इतनी मेहनत की, रात भर जाग जाके, है ना, लेकिन जैसे ही गुरु महाराज आए तो उनसे डांट पड़ी, या फिर उन्होंने पूरे हमारे प्लानिंग को ही चेंज कर दिया, या जिस भक्त के साथ हम प्रचार करना चाहते थे उस भक्त को हमसे ले लिया जिसके लिए हम लोग योजना बना रहे थे कि हम 5-6 डिवोटीज मिलकर ऐसा प्लान करेंगे, यहां जाके प्रोग्राम करेंगे, ऐसा प्रीचिंग करेंगे, नहीं बेसिस खोलेंगे या कॉलेजेस में प्रोग्राम करेंगे, हमारे साथ ये भक्त रहेंगे, चाहते कि नहीं चाहते लोग। तो लेकिन गुरु महाराज कृपा करते हैं, बोलते हैं ऐसा करें, मेरी इच्छा ये है कि इनको उस सेंटर में भेज दिया जाए प्रीचिंग के लिए, है ना, या फिर कई जगह और भी सेवाओं की आवश्यकता है ना। तो उस समय विचार करता है वो भक्त, क्या यार सारा प्लान चौपट हो गया हमारा इतनी सारी प्लानिंग की थी, चोट किस पे पहुंचती है, हमारी ईगो पे चोट पहुंचती है, और गुरु का कार्य यही है हमारी ईगो को क्रश करना। हम भले सफल हो या असफल हो, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान हमारी सफलता या असफलता के ऊपर निर्भर नहीं है। सफलता देने वाले भी कृष्ण हैं और असफलता भी देने वाले कृष्ण हैं। अगर ये मान ले तो सुखी रहे, नहीं तो हम सोचेंगे कि भैया हम तो मंदिर के अधिकारी हैं या हमारे डिपार्टमेंट चलाते हैं, हम इतना प्रचार करते हैं, हमने इतने बिजनेस खोल लिए हैं, और अब हमारे प्लानिंग के हिसाब से ही होना चाहिए सब कुछ। हमने डिसाइड किया था, इतने सारे आइटम डिसाइड किए थे फीस्ट के लिए, और हमने 10 आइटम डिसाइड कर दिए, गुरु महाराज आए उन्होंने 2 आइटम कर दिया, तो फायदा क्या हुआ हमारे प्लानिंग का, है ना। तो किस पे चोट पहुंचता है, हमारी ईगो पे चोट पहुंचता है। तो ऐसे में हम कभी भी शांति में नहीं रह सकते, कभी भी सुखी नहीं रहेंगे हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि कृष्ण ही नहीं गुरु भी हमारे परीक्षा लेते हैं। भक्ति का मतलब है कि जीवन भर हमारी परीक्षा चलती रहेगी, और जितना अधिक हम परीक्षा में सफल होंगे उतना अधिक चांस है हमारा वैष्णव बनने का, क्योंकि वैष्णव के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सहन करना, नम्र बने रहना और सहन करना। तो जो जितना ज्यादा सहन करता जाएगा और गुरु के आदेश अनुसार सेवा करता जाएगा, तो फिर अपने आप देखेंगे बड़ी आसानी से भक्ति में आगे बढ़ेंगे, बड़ी आसानी से। लेकिन जहां हम अपनी कर्ता की भावना प्रदर्शित करेंगे, वहां पर कभी भी जो है ये गुण जागृत नहीं हो सकता, समता की भावना कभी नहीं आएगी हमारे अंदर। हाँ, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट, बड़ा अच्छा बताया यहाँ पर। ये जो हम बता रहे हैं आपको, जो हिसोलन सचेतन महाराज जो किताब लिखी है उसी में से बता रहे हैं, साथ में कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए ताकि हम लोग समझ सकें। तो इसलिए ये होगा, जब भी हम सेवा में आते हैं या प्रचार करते हैं या कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि सफलता हो या ना हो, सफलता हमें मिले या ना मिले, अगर गुरु प्रसन्न है वही हमारी सफलता है। हो सकता है कि हमारे पास 1000 भक्त इकट्ठे हो जाए, हमारे पास हम बोल सकते हैं दिखाने के लिए हमारे 5000 भक्त हमने बना लिए, हमारे कंग्रेगेशन में 5000 डिवोटीज हैं, कितना सफल प्रचारक हूं मैं, है ना। और एक्सटर्नली आपको बहुत ग्लोरिफिकेशन भी मिल सकता है, सर्टिफिकेट्स भी मिल सकते हैं, मालाएं भी मिल सकती हैं आपको, आपको राजभोग की थाली भी मिल जाएगी महाप्रसाद, लेकिन गुरु अगर प्रसन्न नहीं है तो फिर ये क्या है, सब कुछ श्रम है वही केवल हम। इसलिए गुरु का प्रसन्न होना भक्ति मार्ग में श्रम एव ही केवलम, ना उत्पादे यति रतिम श्रम एव ही केवलम।
तो आकर्षण हमारा अटैचमेंट हमारी रति सबसे पहले गुरु के चरणों में होनी चाहिए, भगवान के चरणों में तो होगी। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं गुरुवाष्टकम में, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतोपि ध्यायंस्तुवाम तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इसलिए गुरु का प्रसन्न होना जो है भक्ति मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण कार्य। गुरु के चेहरे पर मुस्कान आ जाए हमें देखकर, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारी सेवा जो है सफल है। भले हमने एक भी भक्त ना बनाया हो, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के हजारों शिष्य थे, वो तो वैष्णव है, लेकिन उनके गुरु महाराज के कितने शिष्य थे? एक ही शिष्य थे। वो एक ही शिष्य जो है हजारों भक्तों के बराबर क्या उससे ज्यादा है कि नहीं? किसी की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। तो कहने का अर्थ यह कि मात्रा की बात नहीं है, गुणवत्ता की बात है, और सबसे बड़ी बात है कि समर्पण। जितना अधिक भक्त समर्पित होता जाता है वो उतना अधिक शांत होता जाएगा, और जितना अधिक हम लोग जितना कम हम समर्पित होंगे उतना हम हमेशा दुखी रहेंगे, चेहरे पर उदासी छाई होगी, है ना। तो इसलिए ये बड़ा ध्यान रखना इस बात का। मैं अगला है दमा, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने मन में और अपनी इंद्रियों के ऊपर निग्रह करना। कैसे? विराग के द्वारा और भक्तिरत कार्यों में लगे रहकर। कहने का अर्थ यह है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं जब तक उसमें हमें तृप्ति ना मिले, संतुष्टि ना मिले, सेटिस्फैक्शन ना मिले, हम सेल्फ कंट्रोल के स्टेज पर नहीं पहुंच सकते। इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें? विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्सु परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक आपने हायर टेस्ट रिलीज नहीं किया आपका टेस्ट बना रहेगा सेंस ऑब्जेक्ट्स में, तो सेल्फ कंट्रोल कहां से आएगा? तो सेल्फ कंट्रोल जो तभी आ पाएगा जब हमें कुछ टेस्ट मिल रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ टेस्ट मिल रहा है। और इसके लिए क्या है कि हमारी साधना बड़ी अच्छी होनी चाहिए, हमारा श्रवण कीर्तन बड़ा अच्छा होना चाहिए, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है हमारे वो बहुत हमें गंभीरता से इसको लेना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों का संग, एसोसिएशन। जब हमें टेस्ट मिलेगा तो अपने आप देखेंगे आपका सेल्फ कंट्रोल आएगा। भक्ति परेशान भाव विरक्ति, है ना, भागवत में लिखा है जैसी आप भक्ति करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्या एक्सपीरियंस करते हैं आप प्रेजेंस फील करेंगे। यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड व्हेन यू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस, यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। और उसका रिजल्ट क्या होगा? विरक्ति, डिटैचमेंट, तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायो अनुघाषम। तो तुष्टि का मतलब क्या है? जैसे आपने भोजन रखा अपनी जीवा में तो सबसे पहले क्या होता है? तुष्टि होती है, और भोजन वो अंदर प्रवेश करता है आपके शरीर में, उधर में जाता है तो पुष्टि होती है, है ना, इंद्रियों का पोषण होता है। और उसके बाद क्या होता है? अनुघाषम, तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपाय। शुद्ध अपाय का मतलब है आपकी भूख मिट जाती है। तो ये तीनों कार्य जो है साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। तो अगर वास्तव में हम भक्ति कर रहे हैं, हम वास्तव में अगर भक्ति कर रहे हैं, अगर वास्तव में हमने भजन क्रिया किया है तो उसका परिणाम ये होता है, क्या होगा? वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसुवैराग्यम ज्ञानम च यद अहित किम। तो ये टेस्ट है। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसके दो पुत्र हैं, भक्ति देवी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये बाय प्रोडक्ट्स है, ये बाय प्रोडक्ट्स है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के ऊपर निर्भर नहीं है। कोई ये ना समझे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के ऊपर निर्भर नहीं, लेकिन भक्ति करने से ये लक्षण प्रकट होते हैं ज्ञान और वैराग्य, और इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई भक्ति करता है तो स्वाभाविक है कि उसके चित्त में ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही प्रकट होगा उसकी चेतना में। और ज्ञान और वैराग्य अगर नहीं प्रकट हो रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है कि कितना हम लोग डिटैच होते जा रहे हैं, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जितना ज्यादा हम लोग एंगेज होते जाएंगे और जितना ज्यादा हम टेस्ट करेंगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहते हुए, तो स्वाभाविक है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। तभी जो है मन और इंद्रियों का जो कि जो उत्तेजना है, वेग जिसको कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, तो ये जो छह वेग है
इनको सहन जो करता है वो वास्तव में गोस्वामी है। एकादशी के दिन परीक्षा होती है हमारी, एकादशी के दिन हम लोग परीक्षा होती है कि पिछले 15 दिन में हमने किस तरह की भक्ति की, उसको हम परख सकते हैं एकादशी के दिन। ठाकुर भक्ति उन्होंने कहा है, और एकादशी के दिन अपने मन को अपने चित्त को लगाया जाता है भगवान के चरणों में श्रवण कीर्तन के माध्यम से, और आत्मा की जो आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, शरीर की नहीं आत्मा की आवश्यकताएं पूरी की जाती है, इसका अर्थ एकादशी का अर्थ ये है। तो ऐसा करने पर क्या होता है, एकादशी का उद्देश्य ही है कि हम लोग के अंदर ये गुण जागृत हो, इंद्रिय निग्रह का गुण जागृत हो, कि हम अपने इंद्रियों को काबू में कर सकें, मन को शांत कर सकें और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से ऊपर उठें, हमारी चेतना शुद्ध होती है। आप लोगों को भी होता है एहसास है, एकादशी रखने के बाद अगले दिन अच्छा लगता है, द्वादशी के दिन सुबह कोई पवित्रता की अनुभूति नहीं होती, सुबह नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, फिर तो कुछ गड़बड़ है। एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी के दिन आप उठते हैं, मंगल आरती में आते हैं या कहीं भी हैं जैसे भी है, तो आपको चित्त में पवित्रता की अनुभूति नहीं होती है, होनी चाहिए। इसका मतलब एकादशी का पालन ठीक से नहीं किया हमने। एकादशी में अधिक से अधिक हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए, उसका लाभ। प्रभुपाद ने बोला है अगर कोई आपके पास इमरजेंसी वाला कार्य ना हो, अगर आप कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य में ना लगे हो, तो हमारे एकादशी में एक ही बिजनेस है, श्रवण एंड कीर्तन। जितना अधिक से अधिक हो सके हमें हेयरिंग एंड चैंटिंग करना चाहिए, ये बड़ा प्योरिफाइंग होता है और इससे हमें एक टेस्ट मिलता है। उस टेस्ट से क्या होगा, डिटैचमेंट क्रिएट होगा और इंद्रियों पर हमारा और ज्यादा निग्रह प्राप्त हम लोग कर पाएंगे। इंद्रिय पर निग्रह का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले जो है स्वादिष्ट व्यंजनों से भी प्रभावित नहीं हो रहे, है ना, सुंदर रूप, सुंदर यानी कि स्पर्श, गंध, है ना, ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स इसको कहते हैं, इनसे हम लोग क्या है प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो आकर्षण क्या है कृष्ण के प्रति है, उनके नाम के प्रति है, उनके रूप के प्रति है, उनके गुणों के प्रति है, उनके लीलाओं के प्रति है, तो स्वाभाविक है कि हमारी इंद्रियां जो है शांत हो जाएंगी। देखिए हर इंद्रियों का अपना अपना कार्य है, इसको इसलिए इन इंद्रियों को वर्किंग सेंसेस कहा गया है, वो अपना कार्य करेंगे और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में ये इंद्रियां उत्तेजित होती हैं और ज्यादा उत्तेजित होती हैं कार्य करने के लिए। लेकिन सात्विक व्यक्ति जो होता है, क्योंकि मन से वो शांत होता है, तो शांत होने के कारण क्या है, वो इंद्रियों के ऊपर निग्रह भी कर सकता है, इसलिए उसको दमा कहा गया। और तीसरा है तप, ऑस्टेरिटी। तो तपस्या का मतलब यह है ब्राह्म मुहूर्त के समय उठना, सुबह सुबह उठना, ब्राह्म मुहूर्त के समय उठना। प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप शरीर भी छोड़ रहे हो तो मंगल आरती में आओ रेंगते हुए, प्रभुपाद जी का कोट, इवन इफ यू आर डाइंग क्रॉल एंड कम टू कम मंगल आरती। प्रभुपाद ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया, प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते थे, पूरी रात ट्रांसलेशन करते थे, प्रभुपाद इतने बीमार हो गए थे, प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को बोलते पालकी में बिठा के प्रभुपाद को ले जाते कृष्ण बलराम के दर्शन कराने के लिए, आपने देखा है? तो उनको क्या दर्शन नहीं हो रहे हैं क्या कमरे में, कि मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो, लेकिन आचार्य होने के नाते वो आचरण से अपने आदर्श से सिखा रहे हैं। तो इसलिए बड़ा आवश्यक है कि प्रातःकालीन कार्यक्रम में बहुत गंभीरता से भाग लें, खासकर सुबह की जो साधना है ब्राह्म मुहूर्त के समय। देहात्मक बुद्धि से अगर ऊपर उठना है तो ब्राह्म मुहूर्त के समय में उठना बहुत आवश्यक है। जो ब्राह्मण बनना चाहता है, अगर वो ब्राह्म मुहूर्त के समय नहीं उठ पा रहा है तो उसका मतलब वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता है, वो कभी नहीं बन सकता ब्राह्मण। वो कितना भी प्रचार कर ले, कितनी भी सेवाएं कर ले, लेकिन ब्राह्म मुहूर्त के समय अगर वो सो रहा है वो ब्राह्मण नहीं है फिर। वो ब्राह्म मुहूर्त के समय सोना जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है आध्यात्मिक जीवन के लिए। इसे जितने भी लोग अगर गिरते हैं आध्यात्मिक जीवन से, इनका पतन होता है, वो इसी कारण से होता है कि ब्राह्म मुहूर्त के समय वो सो रहे हैं, यानी कि गिरने की पतन की संभावना बढ़ जाती है जो ब्राह्म मुहूर्त में सोए पड़े हैं अंधकार में, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली समय होता है जब आध्यात्मिक जीवन का पूरा लाभ हमें मिलता है। और ये ब्राह्म मुहूर्त का समय होता है 4:10 से लेकर 4:58 तक। मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। तो ये जो 4:10 से लेकर 4:58 का जो समय है, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। और इसी समय में श्री विश्वराज की ठाकुर ने कहा है कि हमें गुरु अष्टकों का पाठ करना चाहिए। विश्वराज की ठाकुर कहते हैं जो ब्राह्म मुहूर्त के समय में जो गुरु अष्टकम आप गाते हैं रोज, उसका नौवां श्लोक है, उन्हें श्रुति फल दिया है। जो भी उच्च स्वर से ब्राह्म मुहूर्त के समय इस गुरु अष्टकम का पाठ करेगा जीवन भर, जीवन के अंत काल में उसको गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। ये विश्वराज की ठाकुर ने आशीर्वाद दिया है। उससे अगर हम सो रहे हैं, है ना, आंखें बंद करके गहरी नींद में, तो फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है बिल्कुल नीरस हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रातःकालीन कार्यक्रम में आना बहुत आवश्यक है। और साथ में प्रातःकालीन कार्यक्रम में हो सकता है कि आप मंगल आरती में भी आ जाएं, और तुलसी आरती में भी हो, गुरु पूजा में भी हो, लेकिन सबसे कठिन होता है प्रातःकाल में महामंत्र का जप करना, वो भी 16 माला। ये सबसे जो है कठिन कार्य है, क्योंकि मंगल आरती में तो खंभे भी खड़े हैं, है ना, हम भी खड़े हुए हैं, और ऐसे ही खड़े हुए हम भी, ना हम बोल रहे हैं ना नृत्य कर रहे हैं, ऐसे ही खड़े हुए हैं, हम भी खंभे की तरह ही खड़े, कोई भाव ही नहीं प्रकट करते हम लोग, ऐसे ही खड़े बस, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन टेस्टिंग पॉइंट क्या है, माला लेके बैठ के जप करना, ये कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है। और जिसने अगर प्रारंभ में अपने आप को नियमित नहीं किया, डिसिप्लिन नहीं किया चैंटिंग में, वो जीवन भर जो है उसका चैंटिंग बिगड़ा रहेगा, और वो आगे सुधारना भी चाहेगा तो कभी नहीं सुधरेगा उसका चैंटिंग। कोई सोचे कि प्रभु जी मैं तो नया हूं, आप पुराने हैं इसलिए आप कर पा रहे हैं, मैं नया हूं इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, आगे चलकर कर लूंगा, आगे चलकर कभी नहीं होगा। जिसका चैंटिंग में विशेष रूप से अगर चैंटिंग जिसका खराब है, अगर चैंटिंग इनडिसिप्लिन्ड है, तो जीवन भर उसका चैंटिंग वैसे ही चलता रहेगा। वो चैंटिंग के समय बात करेगा, चैंटिंग के समय आकाश में देखेगा, रेडार जब करेगा, मोबाइल जब करेगा, लेकिन वो चैंटिंग नहीं करेगा। चैंटिंग का मतलब ये है, अगर आप घर पे हैं तो प्रभुपाद जी का जपा कैसे चलाएं, तुलसी महारानी के पास बैठे, और अगर आप मंदिर आते हैं, मंदिर आने का लाभ मिलता है आपको, जैसे रविवार के दिन आप देखिए बहुत भक्त आए थे सुबह, नहीं तो सब बहुत लोग बैठ के जप कर रहे थे, सब जप कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए सिर्फ दो लोग बात कर रहे हैं, कितना और लगेगा। तो इसलिए ये बड़ा गंभीर, हमें से गंभीरता से लेना है, जो प्रातःकाल में विशेष रूप से जो जप का है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि जप जो अच्छा होगा तो फिर आप जो भागवत सुनेंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे, तो वो ग्रंथ भी समझ में आएगा। इसे चैंटिंग का रीडिंग से बहुत क्या है, गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन। तो इस तरह से ये सबसे बड़ी तपस्या है। और साथ में गुरु के आदेश अनुसार युक्त वैराग्य का भी आप अभ्यास करना चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिल सकता है, अपार धन संपत्ति मिल सकती है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो इस प्रकार गुरु से निर्देशन लेते हुए कैसे किसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, इसके लिए निरंतर हमें मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। तो ये तपस्या, और कलयुग में तपस्या क्या है, महामंत्र का जप करना, और प्रभुपाद ने तो बहुत सरल नियम दिए, चार नियम पालन करना। ये जो चार नियम पालन करने के लिए कहा है प्रभुपाद ने, देखने में तो सरल लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन है कलयुग में। इसे दीक्षा लेने के उपरांत भी कई सालों तक जो है लोग बड़ी मुश्किल से इन चार नियमों का पालन कर पाते हैं, ये हार्श ट्रूथ है, कड़वा सच है, लेकिन वास्तव में सच है, क्योंकि ये कलयुग है, कली बैठता है वहां पर जहां पर ये चार नियम टूटते हैं, और जैसे ही ये चार नियम टूटेंगे कली आपके सर पर बैठ जाएगा, और कली क्या करेगा, कलह मचाएगा। और क्योंकि आपने नाम के बल पर पाप किया है, तो आकर्षण भी धीरे धीरे आपका नाम के प्रति समाप्त होता जाएगा। तो तपस्या ये है कि हम चार नियमों का पालन बड़े शक्ति से करें, और सबसे बड़ी तपस्या तो एक भक्त के लिए है कि वो गुरु के आदेश का पालन करे। प्रभुपाद के शब्दों में प्रभुपाद ने कहा कि असली तपस्या क्या है, कि शिष्य जो है गुरु की आज्ञा का पालन करे। तो गुरु की आज्ञा क्या है, गुरु की सबसे पहली आज्ञा ये है। प्रभुपाद ने बताया, एक बार सत्स्वरूप महाराज जब वो लेटर्स रिसीव करते थे, तो हजारों लेटर्स आते थे प्रभुपाद के पास, तो सबसे पहले उनके पास वो सेक्रेटरी थे, तो सत्स्वरूप महाराज के पास सेवा का इतना लोड बढ़ गया, तो चैंटिंग उनका रेगुलर नहीं हो पा रहा था, तो बहुत परेशान हो गए। तो महाराज ने क्या किया, सब लेटर्स के ऊपर अपना ऊपर लेटर रख दिया लिख के, ताकि प्रभुपाद सबसे पहले वो चिट्ठी पढ़े। तो प्रभुपाद ने चिट्ठी पढ़ा तो प्रभुपाद ने बुलाया ससुर महाराज को, तो प्रभुपाद ने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो प्रभुपाद ने किसी डिवोटी को बुला के तुरंत जो है उनकी सेवाएं कम कर दी। फिर प्रभुपाद ने महाराज को बोला, ऑफ ऑल द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र इज द मोस्ट एसेंशियल, मिनिमम 16 राउंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है गुरु का। कई बार हमें लगता है गुरु की आज्ञा का मतलब है प्रचार करना, या गुरु की आज्ञा का मतलब है केवल बाहर घूमते रहना। वो है, वो भी है, वो भी जरूरी है, लेकिन कई इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शंस, और कई इंस्ट्रक्शंस होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रक्शंस, प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस एंड सेकेंडरी इंस्ट्रक्शंस। तो जो प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस है, किसी भी हाल में, किसी भी देश काल परिस्थिति में, ये प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस का परित्याग नहीं किया जा सकता, अनलेस अंटिल आपको गुरु खुद कहे कि ठीक है आप ऐसा कर लो। आप मान लीजिए ऐसे देश में जा रहे हैं जहां पर आप नॉन वेज ही मिलता है आपको, और अगर कुछ वेज मिलता भी है तो बिना प्याज के मिलता नहीं, तो गुरु आपको कह सकते हैं ठीक है प्याज निकाल के खा लो, प्रचार के लिए आपको इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन इसको हम सोचें कि डेली हम प्याज डाल के खाएंगे और निकाल के फेंकेंगे फिर खाएंगे, वो प्राइमरी इंस्ट्रक्शन नहीं है। प्राइमरी इंस्ट्रक्शन ये है कि चैंटिंग हमें करना है 16 राउंड। साइबेरिया में जब गए वो डिवोटीज, इनको डाला गया जेल में, असाइलम में, तो वहां रहकर भी वो क्या करते, ब्रेड से निकाल के उन्होंने बीड्स बनाए और उसमें वो चैंटिंग करते थे, डेली चैंटिंग करते थे जेल के अंदर। तो उन्होंने संख्या अपनी पूरी की। तो ये तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है कलयुग में, बहुत बड़ी तपस्या है। तो जितना ज्यादा हम तपस्वी होंगे, ऑस्टियर होंगे स्पिरिचुअल लाइफ में, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तो क्या आपको फिर अनंत सुखी प्राप्ति होगी। ऑस्टेरिटी से क्या होता है, हमें प्यूरिफिकेशन होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। तो तपस्या जो है कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा वेल्थ है, और जब भी तपस्या का हमें मौका मिले उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और तपस्या का एक अर्थ ये होता है, तपस्या का अर्थ ये होता है कि जब हम ना चाहते हुए भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसको तपस्या कहते हैं। जैसे हमारे लिए क्या क्या तपस्या है, श्रवण करना तपस्या है, जप करना तपस्या है, भगवान का दर्शन करना तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। राधा पार्षदी का दर्शन करना, अगर उनके समक्ष दो मिनट भी खड़े हो जाए तो बहुत बड़ी तपस्या है। हम ऐसे कितने भक्त होंगे जो राधा पार्षदी के सामने 15 या 20 मिनट पर खड़े होंगे, बताइए। पिछली बार आप में से कितने भक्त हैं जो राधा पार्षदी के समक्ष खड़े थे 15 मिनट या आधा घंटे। हम खड़े होते हैं 2 मिनट, गोविंदम आदि पुरुषम होता है और एकदम से दूसरे ऑल्टर में भाग जाते हैं। राधा पार्षदी के सामने खड़े होने में भी हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा मन क्या है, मन बहुत ज्यादा उत्तेजित है, मन बड़ा चंचल है, मन में कोई आकर्षण नहीं है राधा पार्षदी के लिए, कृष्ण के लिए। इसलिए उनको देखते है क्या है, एक वो भक्त हुआ करते थे जो देखते रहते थे और ठाकुर जी जो ऑल्टर से निकल के बाहर आ जाते थे, इसलिए उनके सामने पर्दा लगा दिया गया था। नहीं, साक्षी गोपाल का था या नाथ द्वारा में, इधर बांके बिहारी का, बांके बिहारी का। इसी तरह से गौरीदास पंडित के साथ भी हुआ, गौर तय ऑल्टर छोड़ के आ गए। एक तो ऐसे भक्त होते थे, और एक हम लोग हैं जो अभी प्राकृत अवस्था में है अधिकांश, तो हम लोग दर्शन करते ही भाग जाते हैं दूसरे ऑल्टर में। तो क्यों हमारी आंखें, हमारे नेत्र, हमारा चित्त जो है राधा पार्षदी के चरणों में नहीं लग पाता, उनके दर्शन करने के लिए हम लोग लालायित क्यों नहीं होते हैं, हृदय में कोई आकर्षण क्यों नहीं है। 2 मिनट या 3 मिनट मुश्किल से खड़े होते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि हमारा मन बड़ा भी मलिन है। इसलिए अर्चे वगैरह का दर्शन करना भी जो है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी तपस्या है कलयुग में, है ना। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि हमारा, प्रभुपाद इसलिए बोलते थे हमारा मन कोयले से भी ज्यादा काला है। प्रभुपाद ने एक बार अमेरिका में बोला कि कई बार मैं प्रचार करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तो दीवार से बात कर रहा हूं, कि कोयले से भी ज्यादा काला है इनका मन। अब कैसे इनको प्रचार किया जाए, कैसे इनको समझाया जाए, प्रभुपाद ऐसे सोचते थे। लेकिन प्रभुपाद की शक्ति है कि उन लोगों को भी प्रभुपाद ने बदला। तो कहने का अर्थ यह है कि इतना आसान नहीं है। तो मन जितना अधिक साफ होता जाएगा हमारा, जितना अधिक पवित्र होता जाएगा, हम भगवान के सामने उनके अर्चे वगैरह के सामने खड़े होने में हमें आनंद आएगा। तो ये सब हम लोग अपने आप को परख सकते हैं कि कितने देर हम लोग खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं राधा पार्षदी के सामने और उनके एक एक अंग को देखने का प्रयास करते हैं, उनको किस तरह से उनका श्रृंगार किया गया है, कौन से वस्त्र उनको पहनाए गए हैं। मन लगता है ऐसे देखने में, करने का मन करता है, नहीं करता ना, तो हमें लगता है जल्दी चलो दर्शन हो गया। और दंडवत हम लोग ऐसे करते हैं जैसे कि कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लोग पुशअप्स फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं हम लोग। खैर, ना करने से वो करना भी अच्छा है, कहने करती है। उसके बाद है शौच, प्योरिटी, क्लीननेस, सफाई। प्रभुपाद सफाई के ऊपर बहुत जोर देते थे और बहुत डांट भी पड़ती थी प्रभुपाद की। हमारे जो अभी मिनिस्ट्री है, जो डीटी वर्शिप के मिनिस्ट्री है, नरसिंह कवच प्रभु उसके मिनिस्टर हैं डीटी वर्शिप के स्कॉल में, तो वो जब आते हैं तो ऑल्टर एरिया में सफाई देखते हैं। वो जानते कहाँ का देखते हैं सफाई है या नहीं, वो ऑल्टर के नीचे देखते हैं, ऑल्टर के नीचे देखते हैं सफाई है कि नहीं। डीटी से कान में हाथ उंगली डालते हैं, नाक के अंदर उंगली डालते हैं, वहां से डस्ट निकालते हैं और सब नोट करते जाते हैं, फिर रिपोर्ट देते हैं वो कि आपके डीटी से कान साफ नहीं है। तो पुजारी कई बार नोट नहीं करते, फटाफट श्रृंगार करते, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, आज बड़ा सुंदर श्रृंगार है, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, कान गंदे, लेकिन राधा पार्षदी के कान गंदे। तो इस तरह से सफाई जो है ना, ये तो मान लीजिए आते क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस बोलते हैं ना, जिस तरह से प्रभुपाद दो चीजें बताते हैं, क्लीनलीनेस और पंक्चुअलिटी डीटी वर्ष में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो प्रारंभिक भक्त हैं, अर्चे वगैरह रखने से पहले उनको घर में सबसे पहले ऑल्टर रखना चाहिए जिसमें भगवान का चित्र हो, पंचतत्व का हो, नरसिंह भगवान का चित्र हो, गुरु परंपरा का चित्र हो, षट गोस्वामी हो साथ में, इनका चित्र रख के इनकी सेवा पहले करनी चाहिए और रोज चेक करना चाहिए कि इन चित्रों में धूल जमा है कि नहीं। इसमें जो अभ्यास हो जाए कि रोज हम धूल निकाल पाते हैं या फिर फूल अर्पण कर पाते हैं, भोग लगाते हैं, तब जाके हम सोचें अर्चे वगैरह के बारे में। अगर हमसे धूल ही नहीं साफ किए जा रहे हैं चित्र से, चित्र के ऊपर जो लगे हैं, तो अर्चे वगैरह की सेवा क्या करेंगे हम। भक्ति का कोई भी कार्य जो है वो एकदम छलांग लगा के नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है, अपराध होता है। मान लीजिए आप कहते हैं नए भक्त को, बेचारा नया पहली बार आ रहा है, आज से 16 माला शुरू कर दो, आप इस कॉन में आए हो, आज से 16 राउंड शुरू कर दो, या किसी को बोलो 64 राउंड करो, आप घबरा जाएगा। तो शुरू में क्या बोलते हैं, दो माला करिए, चार माला करिए। इसी तरह से जितने भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं उसमें हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं नहीं। और इसी तरह से डीटी वर्शिप भी है, डीटी वर्शिप आप बोलेंगे कि नहीं पहले आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है आज से, है ना, और राधा कृष्ण की सेवा शुरू करिए। आप तो राधा कृष्ण के भक्त हैं, राधा कृष्ण मिल जाते हैं वृंदावन में बड़ी आसानी से, और आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, ऑल्टर भी आप बना सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी है, और आप पुजारी भी रख सकते हैं, आपको खुद करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं करते आप राधा कृष्ण की सेवा। तो बेचारा वो अपने कमरे की सफाई नहीं कर पाता तो क्या राधा कृष्ण की सेवा करेगा वो। इसलिए सफाई पे प्रभुपाद बहुत जोर देते थे। प्रभुपाद ने यहाँ तक कि जब मायापुर में, हमने पहले भी बताया था एक बार, कि वॉशरूम के बाहर, टॉयलेट के बाहर जो है प्रभुपाद रुक गए अपने डिसाइपल्स के साथ, और प्रभुपाद ने केन से, अपने वॉकिंग स्टिक से दरवाजा खोला और प्रभुपाद ने देखा बहुत बैड स्मेल आ रहा है, तो प्रभुपाद ने कहा ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो सफाई हो नहीं पाए, वो आया नहीं कोई सफाई करने वाला। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग बड़े बड़े लोग यहाँ क्या कर रहे हो। प्रभुपाद ने उनको डांटा, तो प्रभुपाद ने फिर वहां गुरु अष्टकम से श्लोक कोट किया, शिव विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो युक्तस्य भक्तान शनियन जतोपी वंदे गुरोशी चरणारविंदम। कि गुरुदेव क्या करते हैं, वो मंदिर मार्जन करते हैं स्वयं, और अपने शिष्यों को भी विग्रह की सेवा में लगाते हैं, खुद ही मंदिर मार्जन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, और अपने भक्तों को, शिष्यों को भी अर्चे वगैरह की सेवा में लगाते हैं। तो प्रभुपाद ने श्लोक कहां पे कोट किया, टॉयलेट के बाहर। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि टेम्पल हॉल ही सिर्फ जो है डीटी एरिया है तो वही टेम्पल है, या हमारे घर में भी जो हमारा टेम्पल रूम है वही केवल टेम्पल है, बाकी और कमरे हम गंदे रख सकते हैं। जहां पर ठाकुर जी आ जाते हैं, मान लीजिए वो पूरा इलाका उनका ही है, आपका कुछ भी नहीं है, अगर आपने सोचा केवल उन्हीं का कमरा है बाकी तीन कमरे मेरे हैं, तो फिर क्या होगा, अशांत रहेंगे हम, जैसे हमने पहले बताया। तो उनको घर का मालिक मानना पड़ेगा, और अगर वो घर के मालिक है तो जैसे वो रहना चाहते हैं वैसे हमें रहना पड़ेगा। तो इसलिए सफाई पे बहुत जोर देना चाहिए। इस वाले श्रीधर महाराज से जो आपको एक बताया व्यक्तिगत अनुभव, तो महाराज आए थे 93 में पंजाबी बाग में, तो महाराज ने पूरा मंदिर देखा और फिर महाराज पीछे गए, कुछ कहा नहीं, फिर चले गए। फिर हमारे गुरु महाराज थे वो थे साथ में, हम लोग वेद व्यासपुर के ऑफिस में जा रहे थे, लिफ्ट में जा रहे थे एक साथ, तो महाराज ने पूछा कैसे लगा आपको पंजाबी बाग टेम्पल कैसा लगा, तो महाराज ने कहा बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सफाई की कमी है। तो महाराज मेरी तरफ देखे गुरु महाराज, तो फिर महाराज बोले नहीं नहीं मैंने बहुत अच्छी बातें भी बताई हैं। श्रीधर महाराज ने उसको कवर किया, मैंने और अच्छी बातें भी बताई। 93 की बात है आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखिए महाराज कितने शार्प है। और उसके बाद करीब अभी याद नहीं मुझे कौन सा साल है, 2000 के आसपास होगा, तो पंचशील में हम लोगों ने कुछ समय पंचशील में रहे थे, तो हमारे माने का कि आज श्रीधर महाराज पंचशील में आके रुकेंगे कुछ घंटों के लिए, तो वहां पर उनका स्वागत कर लेना। तो हमने क्या किया, पूरे मंदिर को बहुत अच्छी तरह से साफ किया, पूरा चमका दिया, एकदम ऐसा लग रहा था कि नया मंदिर हो, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एक जगह एक भी कोई डस्ट नहीं, कोई पार्टिकल नहीं। तो हमें लगा कि बहुत लगा कि आज तो बड़ी तारीफ होगी, बहुत सफाई हुई है। तो महाराज को अंदर वाला कमरा महाराज के लिए अरेंज किया, तो वहां महाराज अपना बैठ के सेवा करने लगे। तो जो कटर होता ना, कटर का ऊपर का एरिया होता है, पेलमेट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, तो महाराज ने अचानक छलांग मारी, पता नहीं क्यों। फिर क्या हो गया महाराज, अचानक महाराज छलांग मारी, ऊपर से ऐसे निकाला, अरे तो व्हाट इज दिस। श्रीधर महाराज वैसे ही बहुत जोक बहुत करते थे महाराज। मैंने कहा महाराज पंजाबी बाग में भी आपने ऐसे ही पकड़ा था एक बार। तो इस तरह से वैष्णव लोग जो है ना वो बड़े कृपालु होते हैं, इसलिए प्रभुपाद बड़े कृपालु थे। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को ऐसा ट्रेन किया और खुद सिखाया, जब वो लोग आते थे हिपीस आते थे तो प्रभुपाद आने से पहले कमरे की सफाई करते थे और जाने के बाद भी प्रभुपाद ही सफाई करते थे। और एक बार जब कुछ लोग ठीक से साफ नहीं कर पाते तो प्रभुपाद उनको साफ करके दिखाते थे। एक बार प्रभुपाद अपने सीट पर बैठे हुए थे इस तरह से ही, और प्रभुपाद अपना कुछ कार्य कर रहे थे, तो प्रभुपाद के एक सर्वेंट आया, वो कमरा साफ कर रहा था, सफाई वफाई कर रहा था, तो प्रभुपाद ने ऐसे देखा, प्रभुपाद ने कहा ऐसे नहीं ऐसे साफ करो, तो ठीक से कर नहीं पा रहा, तो प्रभुपाद एकदम से उतरे नीचे, प्रभुपाद ने कहा लाओ मुझे दिखाओ, तो प्रभुपाद ने फिर खुद पोंछा लगाया और करके दिखाया कि ऐसे करते हैं साहब। तो प्रभुपाद इस तरह से सफाई पे बहुत ज्यादा जोर देते थे, और सफाई पे जितनी डांट पड़ती थी किसी में नहीं। मायापुर में भी वहां एक छोटा सा एक पॉन्ड जैसे था, उसमें क्या हुआ कि चावल जब लेके आए तो चावल काफी गिर गया था उस पॉन्ड में, तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से हुआ करके, तो प्रभुपाद ने कहा उतरो नीचे पानी में और सारा चावल निकालो बाहर और उसको सुखाओ धूप में, फिर उसको लगाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो प्रभुपाद ने कंसर्न होते थे सफाई के मामले में, तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे प्रभुपाद। एक बार वृंदावन की बात है, हरीश्वरी प्रभु बता रहे थे कृष्ण बलराम ऑल्टर के बाहर जो है काफी धूल जमी थी, तो प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज दिस डर्ट, तो उस डिवोटी ने कहा कि प्रभुपाद दिस इज ब्रज रज। प्रभुपाद ने कहा रास्कल दिस इज नॉट ब्रज रज। तो इस तरह से प्रभुपाद वृंदावन में सफाई पे क्यों जोर दिया, हालांकि ब्रज रज है वास्तव में, लेकिन अगर प्रभुपाद ने देखा अगर हम गंदा रखेंगे और मंदिरों की तरह जैसे है वहां और मंदिर, तो कोई आएगा नहीं फिर। और आज आप देखिए कितने भी हमारे लाइफ में हमसे दुखी हो लेकिन एक बात से हमेशा खुश रहते हैं कि आपका डीटी वर्षी और आपके मंदिर में सफाई बढ़ी रहती है, तो इस वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो प्रभुपाद प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभुपाद ने सफाई पर जोर दिया। एक बार प्रभुपाद अपने क्वार्टर से बाहर निकल के आए, जहां प्रभुपाद का क्वार्टर है ना वृंदावन में टेम्पल के अंदर, तो वहां से जैसे प्रभुपाद बाहर निकल के आए तो एक कोने में थोड़ा सा पानी था, सफाई करते कई बार दीवार के कोने में कई बार साइड में जो है पानी कई बार रह जाता है, तो प्रभुपाद उसके ऊपर खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, और खड़े होने के बाद प्रभुपाद कहते हैं अब मैं यहां पर खड़ा हूं कुछ देर के लिए, अब मैं क्या करूंगा पूरे मंदिर में चलूंगा, देखो 1 2 3 4 प्रभुपाद चल दिखे, देखो सब गंदा हो गया ना, तो इसका मतलब तुम लोगों ने सफाई ठीक से नहीं की है। तो प्रभुपाद इतने शार्प थे कि प्रभुपाद एक बार नजर मारेंगे पता जाएगा कहां पे क्या गंदा है। तो एक बार वो जो शैंडलियर है ना वृंदावन टेम्पल के अंदर बीच में शैंडलियर देखा आपने बड़ा वाला जैसे यहां पर है, वो शैंडलियर में घोंसला था, घोंसला कबूतर ने वहां बनाया हुआ है, तो प्रभुपाद से वैसे ही प्रभुपाद सर ऊपर करके चलते थे. प्रभुपाद ऊपर देखा, व्हाट इज दिस. उसने तो फिर उन्होंने कहा कि प्रभुपाद पता नहीं उसमें वो बच्चा होगा, उसका घोंसला है, कहीं मर ना जाए. प्रभुपाद ने कहा हटाओ उसको. तो इसलिए प्रभुपाद बहुत जोर देते थे सफाई पे, इसलिए क्योंकि प्रभुपाद और उनके शिष्य भी कम नहीं है, है ना, सफाई के मामले में. जैसे कई हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हुए हैं, सुनील तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज, या उनके साथ कोई रह जाए दो दिन तो उसको पता लगा सफाई का मतलब क्या होता है. बहुत स्ट्रिक्ट थे ये सब, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सफाई के मामले में. तो तमालकृष्ण महाराज आए थे यहाँ पे, सुनील तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज आए थे जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, 94 की बात होगी. तो नीचे गोविंदास रेस्टोरेंट में था हमारा. तो उसके बाद तो तीन महाराज, दो महाराज और भी आए थे, महारदी महाराज भी आए थे और भक्ति चारों महाराज, तीनों महाराज एक साथ लेक्चर दे रहे थे, उनके लिए तीनों को आसन लगाया था. तो सब थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे. तो फिर हमने चावर दिखाना शुरू किया महारदी महाराज को मैंने. तो फिर उतने क्या हुआ कि हमने देखा लक्ष्मण प्रिया प्रभु जो है वो तमालकृष्ण महाराज को चावर कर रहे हैं. तो मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा हम भी कुछ करें महाराज की सेवा. तो मैंने उनसे चावर ले लिया. तो महाराज मुझे पीछे देखे दो तीन बार. तो महाराज ने कहा ठीक तरह से करो, ठीक तरह से करो. दो दो लोग चावार कर. तो फिर थोड़ा और मैं कोशिश किया ठीक तरह से हो. फिर महाराज बोलते हैं ही इज बेटर देन यू, यू डू फॉर महानदी स्वामी. तो ऐसे ही को क्रश किया. और महाराज की जब डांट पड़ी तो ऐसा लगा कि मतलब पूरा शरीर में करंट दौड़ गया. उसके बाद फिर क्या हुआ, महाराज अपने रूम में जा रहे थे, जीबीसी रूम जो महाराज का, हमारे महाराज का रूम है. तो उस तरफ महाराज जा रहे थे, उनको लेके जा रहे थे प्रसाद के लिए. तो इतने में हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस समय गृहस्थ त्रिकाला के प्रभु, तो त्रिकाला के प्रभु ने कहा कि महाराज को जीबीसी रूम में ले जाओ. मैंने कहा मैं, मैंने कहा हाँ आप ले जाओ. मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी महाराज को ले जाने की, क्योंकि मुझे नहीं पता वहां क्या सिचुएशन है रूम में. वहां पे रूम में ये ना हो वो ना हो तो फिर डांट फिर पड़ेगी. तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी. अचानक वृंदावन चंद्र प्रभु थे उस समय, वो कुछ बात कर रहे थे, वो फिर लेके आगे चले गए. तो मैं पीछे से खिसक गया. मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं जाने के ऊपर. वहां पहुंचे महाराज रूम में, तो सब कुछ लिया, प्रसाद शाद लिया, सब कुछ हो गया. अब उन्हें राघव पंडित प्रभु वहां पे खड़े थे. तो बाथरूम में गए, वॉशरूम में गए हाथ पाथ धोने के लिए. तो महाराज का साबुन कहाँ है. बस साबुन के लिए डांट पड़ गई. बोलते इतना बड़ा मंदिर बनाने का फायदा क्या, तुम्हारे पास साबुन नहीं है अगर. तो ये लोग तो इतने इतने चीज को लोग पकड़ते थे बहुत बहुत. अगर आपने गलत प्रसाद सर्विस कर दिया, मान लो आपने दाल के ऊपर खीर डाल दी गलती से, प्रसाद सर्विस करते हो तो बस बस आपको बिठा के प्रसाद करें, आपकी सेवा करेंगे, बोले यू सिट आई विल सर्व यू. तो इस प्रकार प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को ऐसे ट्रेनिंग दिया है कि आज भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते प्रभुपाद डिसाइपल्स. जब हमारे 12 नंबर के बाहर भी बहुत गंदगी बड़ी हुई थी, हमारे महाराज भी वहां से गुजर रहे थे, तो एक भक्त को देखकर महाराज ने, एक्चुअली उस भक्त ने नहीं डाला था, वो किसी और कमरे से निकला था कूड़ा. तो ये भाई साहब खड़े थे वहां पर और महाराज उधर से गुजर रहे थे. महाराज का तुम जानवर हो क्या. महाराज तो तुम जानवर हो. कह रहे बोल रहे तो भक्त बनेगी तो दूर की बात है, तो पहले तो मनुष्य बनना पड़ेगा. तो शौच में रहना कोई भक्ति का लक्षण नहीं है, देखा जाए तो ये सभ्य व्यक्ति का लक्षण है. तो सभ्य व्यक्ति जो है वो साफ रहता है, नेचुरल है. तो भागवत में कहा गया स्नानम एव ही प्रसादनम, ये कलयुग का लक्षण है. प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं न्यूयॉर्क जब गया तो मुझे कम से कम 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता था दूर नहाने के लिए सिर्फ, क्योंकि वॉशरूम ही नहीं था. और कई बार अगर वॉशरूम होता भी उसमें भी हिप्पीज की इतनी लंबी लाइन खड़ी होती कि प्रभुपाद को पीछे खड़ा होना पड़ता. उनको तो पता नहीं कल्चर क्या है, स्वामी जी हैं आचार्य हैं कौन है. तो प्रभुपाद सबसे पीछे खड़े होते थे और वहां से 2-3 किलोमीटर प्रभुपाद जाते, कई बार स्टेशन में जाते या क्या कहते हैं बाईपास में जाते, जहां भी वॉशरूम अवेलेबल होता वहां जाके फिर ढाके आते. तो प्रभुपाद वहां न्यूयॉर्क में रहकर भी अपना जो है डेली रूटीन का फॉलो करते थे स्नान करने का. तो कहने का प्रभुपाद प्योरिटी पे, क्लीनिनेस पे बहुत जोर देते थे. यानी कि इंटरनल प्योरिटी हमें प्राप्त होती है चैंटिंग से, और एक्सटर्नल प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी जो है हमें प्राप्त होती है स्नान से, सफाई रखने से. इसलिए हमें सफाई पे बहुत जोर देना चाहिए. जितना अधिक हम लोग साफ रहेंगे या साफ रहने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा मन भी साफ रहेगा। चेतने महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से दिखाया है। गुंडीचा मंदिर मार्जन में लगभग 200 भक्त थे महाप्रभु के साथ, और स्वयं मंदिर मार्जन महाप्रभु ने किया और भक्तों को भी उसमें लगाया। तो कई बार अगर मंदिर में सफाई करने का मौका मिलता है तो हमें आगे आना चाहिए, और इससे क्या होगा, जितना अधिक मंदिर साफ होगा भगवान भी हमारे चित्त को साफ करेंगे, हमारा मन भी साफ होगा। और जब भी हम गंदगी देखते हैं, जब भी हम कूड़ा देखते हैं, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हमारे अनर्थ ही हैं ये सारे। कहने का अर्थ यह है, प्रभुपाद ने बताया है कि मान लीजिए आप जिस कमरे में रह रहे हो कमरा गंदा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वो चेतना को शो कर रहा है, हम जो अंदर है वही बाहर रिफ्लेक्ट होगा। आप समझ रहे हैं? तो अगर हमारा मन गंदा है, अंदर से हम बिल्कुल गंदे हैं, चेतना हमारी अशुद्ध है, तो बाहर अपने आप जो है हम देखेंगे सारा गंदा होगा चारों तरफ। और अगर हमारा वास्तव में कॉन्शियसनेस प्योर है तो हम उस गंदे वातावरण में रह ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कई साल तक प्रैक्टिस किया कृष्णा कॉन्शियसनेस का, और बगल में पड़ोस में कोई प्याज बना रहा है, उस प्याज के स्मेल को आप टॉलरेट कर सकते हैं? सनातन चैतन्य प्रभु, आपके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है ना, ये जहां पे अपना इनका वो केटरिंग का जो है बिजनेस है, तो इनके फर्स्ट फ्लोर में या पता नहीं कहाँ पे वो लोग रेलवे को सप्लाई करते हैं। रेलवे में तो आप जाते हैं आजकल, ट्रेन में बहुत बुरी हालत है। कल हम मिले थे उससे, रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन के जो आपके जीएम है वहाँ, ग्रुप जनरल मैनेजर, तो मैंने उनको बोला मुंह पे, मैंने कहा कि क्या आप ट्रेन में इतना नॉनवेज सर्व कर रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, वहाँ पे पूरा गंदा करके रखा है, धाम ऐसे राजधानी एक्सप्रेस, और हर दूसरा व्यक्ति जो है नॉनवेज खा रहे हैं वहाँ पे। बोलते क्या करें, हम डिमांड है सप्लाई क्यों कर रहे हैं आप? तो इन्होंने ये एक्सपीरियंस हमें ये बता रहे हैं कि कल इनके फादर बता रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे कि ये अब घर पे जाके लेने लग गए हैं प्रसाद, वहाँ ले नहीं पाते हैं प्रसाद, क्योंकि ये टॉलरेट नहीं कर पाते, जो स्मेल आता है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे। तो ये कॉन्शियसनेस शो कर रहा है कि व्यक्ति जब प्योर होता जाता है तो वो बहुत सेंसिटिव होता है एनवायरमेंट के लिए। जो व्यक्ति जितना तक कृष्णा कॉन्शियस होता है वो बड़ा सेंसिटिव हो जाता है एनवायरमेंट। सेंसिटिव का मतलब ये है, जैसे मान लो ट्रेन में भी बैठेंगे और नाले से बदबू आ रही है, कोई सिगरेट वहां से पी रहा है, और दूसरे कोच से कोई आपको स्मेल आ रहा है नॉनवेज खाने का, और आप बैठे हुए हैं, और आप क्या करें? तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत क्या कर लेते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, उसको काउंटरैक्ट कर देते हैं। तो अगरबत्ती जलाने से क्या होता है कि खुशबू फैल जाती है, तो उससे वो सप्रेस हो जाता है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इस सब का प्रभाव जो है हमारी चेतना में पड़ता है, और जो सूंघ रहे हैं उसका प्रभाव भी हमारी चेतना में पड़ता है। तो अगर गटर का स्मेल अगर हम ले रहे हैं अंदर, तो नेचुरल है कि कुछ ही समय में हम तमोगुण में चले जाएं। इसलिए देखा गया है कि जिस कमरे में चार पांच लोग सो रहे हैं और आप भी वहां पर बैठते हैं, तो कुछ समय के बाद आप भी सो जाओ, है कि नहीं बात सही? और अगर चार लोग उठते हैं तो आप भी उठ जाओगे। कारणम गुणसंगस्य सद असद जन्म योनिषु, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि गुणों के, जिस गुण के संग में हम रहेंगे उसी का हम लोग क्या करेंगे, गुण जागृत करेंगे। इसलिए ड्राइवर वाले के साथ जहां बैठते हैं, जो व्यक्ति बैठता है उसको सोना नहीं चाहिए, तो वो सो गया तो ड्राइवर भी सोएगा। फिर हम लोग रजोगुण से तमोगुण में गए और फिर क्या पता नहीं आगे कहां जाएंगे। तो इसलिए पवित्रता के ऊपर बहुत ही ज्यादा हमें जोर देना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट क्लीन, शौचम इज अ क्वालिफिकेशन ऑफ ब्राह्मण, वी आर गेटिंग सेक्रेट थ्रेड बट वी आर नेग्लेक्टिंग हाउ टू रिमेन शौचम शुचि, शुचि नाम शुभताम गेहे योग भ्रष्ट विजाय थे। प्रभुपाद का कोट पढ़ रहे हैं, शुचि मीन्स फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, सो वी आर एक्सेप्टिंग सेक्रेट थ्रेड टू बिकम फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, बट वी डू नॉट नो आफ्टर ईटिंग वी हैव टू वॉश अवर हैंड, वी आर टेकिंग द हैंडकरचीफ एंड फिनिश्ड। सो दिस काइंड ऑफ ब्राह्मण वॉट दे विल डू, दिस इज नॉट इवन अ सिविलाइज मैन, सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल हाउ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जैसे आपको जब जने भी मिलेगा, धागा मिलता है, सेक्रेट थ्रेड मिलता है, तो वी शुड मेक श्योर कि जो सेक्रेट थ्रेड मिल रहा है उसको भी साफ रखा जाए। केवल ये नहीं कि मंत्र उच्चारण करके उसको छोड़ दें फिर, क्योंकि वो सेक्रेट थ्रेड है उसको साफ करके रखना भी बहुत ही आवश्यक है, खासकर शेविंग के समय। जब शेविंग करते हैं कुछ लोग तो वो सारा उसमें गिरता है, जने में गिरता है। उसका तरीका ये है कि शेविंग के टाइम उसको आप थ्रेड को आप कमर में बांध सकते हैं, और जब उसके नहाने के बाद फिर से आप उसको प्रॉपर पोजीशन में ला सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर जितना हम लाभ उठाना चाहते हैं, अगर ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं, उतना अधिक हमें कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा इन चीजों में। शांति, टॉलरेंस, यहां शांति का अर्थ है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि सहन करना। कोई आपको, आपकी निंदा करता है, कोई आपके साथ अन्याय करता है, हमें ऐसा लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये पक्षपात किया जा रहा है ना, पक्षपात किया जा रहा है, वास्तव में मैं सही हूं, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। वैश्य समाज में अन्याय कभी नहीं होता है, वैश्य समाज में कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, भक्तों की कृपा होती है। मान लीजिए भक्त अगर बहुत निंदा भी कर रहे हैं हमारी, तो यह भी कृपा है, क्योंकि भक्त कम से कम हमारा ध्यान रख रहे हैं। अगर भक्त निंदा नहीं करेंगे हमारी, तो हम समझेंगे हम बहुत सही है, और उससे हमारा ईगो और बढ़ जाएगा। जब निंदा हम सुनते हैं तो और हम लोग सतर्क होते हैं। तो इसलिए सहन करना बहुत जरूरी है। भक्ति सिद्धांत महाराज बड़े खुश हुए थे, बहुत दुखी हुए थे बल्कि, जब उन्होंने सुना कि पास में निकट में जो पड़ोसी है जो हमेशा निंदा करता था उनकी, उसने शरीर छोड़ दिया है। भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य जो थे वो बड़े खुश हुए, है ना, चलो अच्छा हुआ ये नासूर मर गया, बड़े खुश हुए। तो उन्होंने बताया गुरु महाराज बड़े खुशी का दिन है, वो मर गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज खुश रहे इनकी बातों से। उसने कहा वही तो मेरे एक असली मित्र था, बाकी तो लोग ऐसे मक्खन लगाते रहते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज का एक कोट है, बी वेयर ऑफ फ्लैटरर्स। जो मक्खन लगाने वाले हैं, तारीफ करने वाले हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन है आपके। लेकिन अगर आपके सामने कोई आपकी बुराई करता है या आपको सुझाव देता है, आपकी कमियां बताता है, वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। तो वैष्णव समाज में स्वाभाविक है कि हम लोगों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, और बहुत वास्तव में देखा जाए वैष्णव समाज में रहते हुए आश्रम के नियमों का पालन करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन तपस्या किसकी होती है, मन की तपस्या बहुत होती है, सहन करना पड़ता है बहुत। और महाराज ने एक बार हमें बताया था, अगर आप वैष्णव बनना चाहते हो तो आपको सहन करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। हरिदास ठाकुर देखिए 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया, लेकिन हरिनाम नहीं छोड़ूंगा बोला। तो इसको कहते हैं सहन कर, सहन करने की सारी सीमा पार कर दी। हमें याद है एक बार हमारे गुरु महाराज ने क्या किया था, एक व्यक्ति था, उसने पेपर में फ्रंट पेज में या सेकेंड पेज में संस्था के बारे में बहुत सारे अनाप शनाप बातें लिखी थी, बहुत उटपटांग बातें लिखी थी, उससे हाफ पेज कवर किया था लगभग, प्रेस का आदमी था वो। तो महाराज ने फिर उनको इन्वाइट किया मंदिर, और जहां हमारा गोविंददास का रेस्टोरेंट है वहां से लेकर महाराज ने उनको रिसीव करने के लिए कहा मंदिर तक, दर्शन करवाया, माला पहनवाया, और फिर महाराज उनको रूम में लेकर आए और राजभोग थाली उनको दी, खूब प्रसाद खिलाया महाराज ने उनको, और खाओ और खाओ। वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। फिर महाराज बड़े प्रेम से उनसे बात किया, और उसके बाद आज तक उसने जो है एक बार भी नहीं दिया उसने संस्था के बारे में। महाराज ने क्या किया, उसको भी मित्र बना लिया। तो कहने की, कहने का अर्थ क्या है कि ये साधु का लक्षण भी, अजात शत्रुः शान्तः, कि मित्र को भी जो शत्रु बना लेता है वो वास्तव में साधु है। शत्रु को भी जो मित्र बना लेता है वो साधु है, शत्रु को भी जो मित्र बना लेता है। तो ये गुण जो है वैष्णव में होते हैं। इसमें ब्राह्मण के जो कई गुण दिए हैं वो वास्तव में वैष्णव के गुण है। जो वास्तव में जैसे कि कोई तपस्या करता है, तो अगर तपस्या करता है तो उसको कहते हैं द्विज, द्विज। और कोई अगर शास्त्रों का अध्ययन करने लगता है उसको कहा जाता है विप्र। और जब विनीत भावना आ जाती है, सहनशीलता की भावना आ जाती है, वो वैष्णव ब्राह्मण कहलाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ती शुनी चे व शपाके च पंडिता समदर्शिना। तो ये वैष्णव है। उसके बाद शास्त्र का ज्ञान भी है, उसके पास क्या है तपस्या का धन भी है, और साथ में वो नम्रता भी प्रकट करता है, सहनशील भी रहता है। तो ये बहुत बड़ा गुण है, इसको जागृत करना इतना आसान नहीं है। कहने में बड़ा आसान लग रहा है ये, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप में लागू करना बड़ा मुश्किल है। कोई हमें दो तीन बातें सुना दे हम लोग तो एकदम से पूरा हमारा शरीर कांपने लग जाता है कि कैसे उसने कह दिया, है ना, कैसे उसने मेरे अंदर कमियां निकाल दी। तो हम एकदम से प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये स्वाभाविक है क्योंकि हम लोग ऐसी संसार से निकले हुए हैं। लेकिन इसका अभ्यास हमें करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो एक बार द्वारका में ऐसे ही हुआ कि रुक्मणी जी के साथ बैठे थे कृष्ण, अचानक उठ के चले गए और कुछ दूर गए फिर वापस आ गए। मैंने कहा वापस क्यों आए, आप तो कहीं जा रहे थे। हाँ, एक भक्त बड़ा कष्ट में था, उसकी रक्षा के लिए मैं जा रहा था, लेकिन उसने व्यवस्था अपने आप कर ली, इसलिए मैं वापस आ गया। अब समझ रहे इस बात को, मतलब कहने का अर्थ यह है कि आपने अगर खुद एक्शन ले लिया किसी के कहने पर, तो फिर कृष्ण का उसमें कोई फिर रोल नहीं है। लेकिन जो भक्त सहन करता जाता है, कृष्ण का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। फिर कृष्ण अपने आप व्यवस्था करते हैं उस भक्त के लिए, क्योंकि कृष्ण को सबसे बड़ा दुख किसको होता है, कृष्ण को होता है, क्योंकि वो देखते हैं ये भक्त जो है चुपचाप सहन करता जा रहा है, मैं जानता हूं उसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं कृष्ण आते हैं। तो ये बहुत बड़ा धन है अगर इसको हम लोग अर्जित कर सके, जैसे यहां पर बताया है, तो उससे क्या हो। और ये बेसिकली यहां पर लिखा है, बड़ा अच्छा बताया उन्होंने, कि जो व्यक्ति समदर्शी होगा ना, वो वास्तव में उतना ज्यादा सहनशील होगा। समदर्शी कहने का अर्थ यह है कि वो ही नहीं देखेगा कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। वो ये देखेगा कि सब भगवान के ही अंश है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं अपनी यथाशक्ति के अनुसार। अगर किसी में कोई कमी भी है तो उसमें अच्छाइयां भी है। कई बार ऐसा होता है कि ये तो व्यक्ति ने क्या क्या किया, मैं जानता हूं कितनी बार से नियम तोड़े हैं, कितनी बार ये निकाला गया है, फिर भी इसको रख लिया गया है, है ना। हम इसको निकालते हैं फिर भी इनको रख लिया जाता है, ठेस पहुंचती कि नहीं पहुंचती, है ना। कई बार ऐसी भी परीक्षा ली जाती है हमारी, जिनको हम नहीं चाहते उन्हीं को बार बार रखा जाता है। एक प्रभुपाद जी के जमाने में एक शिष्य थे प्रभुपाद जी के, वो 3 बार चले गए संसार छोड़ के, और प्रभुपाद जब भी वो वापस आते हैं तो प्रभुपाद को रीइंस्टेट कर देते उसी पोजीशन में। तो भक्त लोग हैरान हो जाते, उनको लगा प्रभुपाद वो कितनी बार जा चुका है और कितनी बार आ चुका है और फिर भी उसको जो है उसी पोजीशन में डाल देते हैं, तो वो कितना पतित है, गिरा हुआ वो तो बहुत। तो प्रभुपाद ने कहा दिस मोमेंट इज एक्चुअली फॉर फॉलन सोल्स, नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं फिर। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम सोचें कि मतलब परमहंस ही होने चाहिए तो ये होगा ही नहीं, संभव ही नहीं होगा। प्रभुपाद ने इसलिए कहा कि हमारी संस्था में हमारे जितने केंद्र हैं वो हॉस्पिटल्स हैं, और हॉस्पिटल्स का मतलब यहाँ पेशेंट्स भी हैं और साथ में डॉक्टर्स भी हैं। कुछ पेशेंट जो है सुधर रहे हैं, कुछ पेशेंट सुधरना नहीं चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करते हैं भगवान फिर, है ना। लेकिन गुरु का मतलब होता है, वैष्णव का मतलब होता है कि उसके अंदर क्योंकि सहन शक्ति होती है, वो सहन करता है। एक किसी भक्त ने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखी किसी भक्त के बारे में, वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो फॉलो नहीं करता है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है, तो मुझसे सहन नहीं किया जा रहा। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया जिस तरह से मैं तुम्हें सहन कर रहा हूं उस तरह से तुम भी सहन करो। तो हमें क्योंकि कई बार लगता है कि हम सही है और बाकी लोगों में ही कमियां हैं, तो लेकिन वास्तव में देखा जाए तो गुरु हमें भी सहन कर रहे हैं। हमसे जो उम्मीद कर रहे हैं हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है हम सही कर रहे हैं। तो गुरु का अर्थ यह होता है कि शिष्य को हमेशा कृष्ण की सेवा में लगाए रखे और वो शिष्य माया में ना जाए। इसलिए गुरु सबसे ज्यादा क्या करते हैं, सहन करते हैं। इसी तरह से शिष्य को भी चाहिए कि वो सहन करने की जो है कला को सीखे, और जितना हो सके हम भक्तों को बचाने का प्रयास करें। आज इस संसार में अगर कलयुग में देखें, इस शहर में ही 1.5 करोड़ की आबादी में कितने लोग हैं कृष्ण भक्त, कितने लोग कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं। तो जो अपना रहे हैं वो दुर्लभ है बहुत, कमियां हम सब में है। इसलिए क्या है कि अगर उसके अच्छे गुणों को देखकर उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए तो उम्मीद है कि समय आने पर वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसको माया में भेज दिया जाएगा तो वहां बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है, खत्म हो जाएगी सारी उम्मीद। इसलिए प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज ने एक बार बताया था कि मैं उसके स्पिरिचुअल सुसाइड का कारण नहीं बनना चाहता, स्पिरिचुअल डेथ का कारण नहीं बनना चाहता। हमारे मारने ने एक बार बताया, किसी भक्त को निकालने के लिए कह रहे थे तो मारने ने कहा कि मैं उसके स्पिरिचुअल डेथ का कारण नहीं बनना चाहता हूं। तो इसलिए वैश्य के अंदर इसलिए करुणा होती है और हमारे अंदर भी वो गुण जागृत होना चाहिए। अगर हम गुण ऐसे जागृत कर पाएंगे, अगर हम सहनशील होंगे, तो सहनशील होना बहुत आवश्यक है। और ये बहुत ही, तो जो क्षमा की भावना है या अहिंसा की भावना है या शांति की भावना है, करुणा की भावना है या फिर नम्रता की भावना है, दया की भावना है, ये सब जो है सहनशीलता के ऊपर निर्भर है। तो सहनशील जो व्यक्ति होगा वो अपने आप नम्र भी होने लग जाएगा। जितना व्यक्ति व्यक्ति इतना भक्त जो है सहनशील होगा उतनी उसमें नम्रता आएगी, और जितना सहनशील और नम्र होगा उतनी अधिक उसमें पवित्रता भी आएगी। सहनशील होना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हर भक्त जो है अपने अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा है, और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भी सहन करना सीखें। इसलिए कई बार होता है कि हमारे वरिष्ठ भक्त हमें डांटते हैं, है ना, यस बहुत डांटते हैं। हमें लगता है कि क्या प्रभु जी ऐसे डांट रहे हैं, हमारे अंदर तो अंदर इतने अच्छे गुण है, बार बार हमें डांटते रहते हैं। तो ये उनकी उनकी कृपा है, वैष्णों की कृपा है, है ना। जगदानंद पंडित कौन थे, वो सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने देखा कि महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को डांटा, क्योंकि जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी को कहा, सनातन गोस्वामी ने बोला कि देखिए महाप्रभु बार बार मेरा आलिंगन करते हैं, मेरे शरीर में पस लगा हुआ है, रोग है, और मैं अपराध कर रहा हूं इस तरह से, और जब भी आते मेरा आलिंगन करते हैं, अब मैं क्या करूं मैं। तो जगदानंद पंडित से पूछा, जगदानंद पंडित ने कहा कि आपके लिए अच्छा होगा कि आप वृंदावन चले जाएं, वैसे भी महाप्रभु की आज्ञा है आपके लिए, वृंदावन में आपके लिए बहुत सारी सेवाएं हैं। तो सनातन गोस्वामी फिर महाप्रभु से बोलते हैं कि जगदानंद पंडित जो है उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि मैं तुरंत ही वृंदावन जाऊं, वहां सेवाएं भी हैं। तो महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आता है, बोलते हैं कहां है वो जग्गा, है उसकी ये जरूरत कि तुम्हें शिक्षा दे सके, उसकी ये हिम्मत। तो जगदानंद पंडित को बहुत डांटते महाप्रभु। महाप्रभु कहते सनातन गोस्वामी तो मेरे भी गुरु हैं, उनको डांटने का अधिकार तुम्हें कहां से मिल गया। तो जगदानंद पंडित को जब डांटते हैं महाप्रभु, तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु ये कृपा आप मेरे ऊपर क्यों नहीं करते हैं, आप जगदानंद पंडित को डांट रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो आपको ज्यादा प्रिय है, आप मुझे तो कभी डांटते नहीं। तो इस तरह से कहने का अर्थ है कि जब शिष्य को डांट पड़ती है गुरु से या वैष्णव से, तो शिष्य को जो है समझना चाहिए कि बहुत बड़ी कृपा है और कई करोड़ जन्मों के जो है पाप हमारे कट गए गुरु की इस डांट से, कई अनर्थ हमारे कट गए केवल गुरु की डांट से। तो प्रभुपाद बहुत डांटते थे, प्रभुपाद जो डांटते थे तो फिर तो खड़े खड़े वहां में फंस गया निकल जाता था। तो महाराज हमारे बता रहे अगर प्रभुपाद के टाइम में आप लोग होते तो भाग जाते, तो प्रभुपाद हम लोग को बहुत डांटते थे। लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य थे जो प्रभुपाद से इतना प्रेम करते थे, इसलिए वो डांट खा के भी जो है वो तैयार रहते थे सेवा के लिए। तो महाराज इसलिए बोलते थे कि महाराज से पूछा कि महाराज आप क्यों स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, लीनियंट क्यों है आप, शिष्यों को आप थोड़ा सा डांटिए कुछ, है ना इस तरह से। तो महाराज ने बताया अगर मैं जानता हूँ कौन कौन कितना पचा सकता है, अगर मैं इन लोगों के साथ डांटूंगा तो ये भाग जाएंगे सबके सब। और एक जगह महाराज ने भी उत्तर दिया कि ये सब अपना घर छोड़ के आए हैं तो मैं इनके साथ इतना कड़क नहीं हो सकता। तो वैश्वर वैश्व का अपना अपना वो है, क्वालिटीज है। तो कहने का अर्थ ये है, एक बार याद है हमें महाराज के, जब हम लोग रथ यात्रा थी हमारी एक बार की, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दिल्ली में थी, तो उस दिन क्या हुआ, रात को रथ अटक गई यहाँ पर मूलचंद हॉस्पिटल में, उसका पहिया खराब हो गया, और अगले दिन जो रथ पहुंचा 1 बजे, शुरू हो रहा था रथ यात्रा 1 बजे, लेकिन रथ पहुंचा 1 बजे दरियागंज। महाराज वहां पहुंच गए और कुछ जीबीसी भी आए हुए थे, कई सन्यासी भी आए हुए थे और बहुत सारे भक्त वहां खड़े थे। तो जैसे ही वो भक्त आया रथ लेके आ गया, उनके महाराज जी रथ पहुंच गया रात पर अटका रहा। तो महाराज ने देखा उसको, एक जोर से चांटा मारा, पाट कर गए, बाप रे बाप, महाराज ने चांटा लगाया उसने। मारे बहुत ही कम किसी के ऊपर हाथ उठाया होगा, रेयरली, लेकिन उससे चांटा मारा, आवाज सुनाई दी सबको। अगले दिन वो कहता है, वो भक्त कहता है, कल तो बड़ी महाराज की कृपा हो गई, पांचों उंगलियां छप गई। तो बड़ी कृपा हो गई गुरु महाराज की, पांचों उंगलियां छप गई। तो इसलिए हमें सहन करना पड़ेगा। तो वास्तव में एक जगह ने पढ़ा था, एक कोट पढ़ा था, वही व्यक्ति वैश्य बन सकता है जो वैश्य की डांट खाने के लिए तैयार होता है। वैश्य की डांट खाते हुए भी अगर वो सेवा में लगा रहता है, निश्चित रूप से वो वैश्य बनेगा। तो ये सबसे कठिन है। तो इस बार कई बार लगता है कि हमें डांट रहे हैं, शायद नफरत की वजह से डांट रहे हैं। नहीं, वैश्य जो डांटते हैं वो उनकी दया होती है, कृपा होती है, और उसको बड़ी कृपा समझकर हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये सहन करना हमें सीखना पड़ेगा। और गुरु महाराज कभी हमारी गलती निकाले तो उसको भी हमें सहन करना है, क्योंकि कई बार होता है कि गुरु हमारी गलती निकालते हैं तो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं या झट से जवाब दे देते हैं कि ऐसा नहीं है गुरु महाराज, वैसा है। तो उसको स्वीकार करना होगा। जितना अधिक हम स्वीकार करते जाएंगे उतना अधिक क्या होगा, हमारा हृदय क्या होता जाएगा, बिल्कुल कोमल हो जाएगा, हमारा हृदय बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड हो जाएगा। अभी हमारा हृदय क्या है, हार्ड हार्टेड है। और जितना अधिक हमारा हृदय सॉफ्ट हार्टेड होता जाएगा, उतनी संभावना है कि कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। हम अगर चाहते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करें, तो हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो हृदय है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पांचवा है, अभी तो और भी तीन चार रह गए, तो हम सोच रहे हैं कि अगली बार लेंगे, समय कम है, क्योंकि क्लास भी है, आरती भी चल रही है, 1 बजे इस भक्ति विकास महाराज का क्लास है। कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लीजिए, महाराज का क्लास शुरू हो जाएगा फिर। ये कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु हमसे खुश है, और हो सकता है कि कई बार गुरु हमारे लेवल को देखते हुए एक्सटर्नली ग्लोरीफाई कर रहे हो, लेकिन वास्तव में वो हृदय से कुछ और उनका विचार हो, ये आप कहना चाह रहे हैं। जो भी है, कहने का अर्थ ये है कि गुरु हमसे प्रसन्न है। कहने का अर्थ ये है कि हम पूछ सकते हैं, सीधी सी बात है कि महाराज हमने जो सेवाएं की हैं इससे आप खुश हैं क्या, सिंपल सी बात, ये बहुत सरल सी बात है। आप गुरु महाराज से पूछिए, महाराज आपको कैसे लगता है और मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ जिससे आप और खुश, वो अपने आप ही बताएंगे। हमें हृदय अपना खोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्या है, आप देखिए रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, गुह्यम आख्याति पृच्छति, इसकी बहुत कमी है हमारे वैष्णव समाज में, ये बहुत बहुत बड़ी कमी है, गुह्यम आख्याति पृच्छति। अधिकांश हम गुरु के पास जाते हैं वो प्रश्न लेके जिनका आध्यात्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं होता, जिज्ञासा नहीं करने जाते। तस्मात गुरु प्रपद्य जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो जिज्ञासा की भावना से अगर गुरु के पास जाए और इस प्रकार जिज्ञासा करें तो आपको प्रश्न का उत्तर वहीं मिल जाएगा गुरु से, सिंपल सी बात, आपको अलग से कुछ परखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, अरे वाह जाए, ये तो है। तो महाराज तो पर्सनिफाइड है, ह्यूमिलिटी पर्सनिफाइड, महाराज जितना सहन करते हैं शायद कोई ना करे। मिथ्या अहंकार को कैसे काबू में किया जाए, और मिथ्या अहंकार होने के कारण हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमें ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा, हमारी साधना अच्छी होनी चाहिए, और हमें अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए जिसमें एक प्रकार के गुण जागृत हों। जितना अधिक हम लोग अच्छी तरह से जप करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो हमें बुद्धि प्राप्त होगी। भगवान गीता में कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। तो हम हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, अपनी साधना अच्छी रखते हैं, तो भगवान फिर बुद्धि देंगे हमें कि इस सिचुएशन में ऐसे ऐड करो, इस सिचुएशन में ऐसे ऐड करो, लेकिन हमारी साधना ही कमजोर है तो फिर कहां से बुद्धि मिलेगी हमें, बुद्धि के बदले हम बुद्धू हो जाएंगे। इसलिए बात बात पर गुस्सा आएगा हमें, बात बात हम चिड़े चिड़े से रहेंगे कि चेतना हमारी है ही नहीं शुद्ध, तो कोई थोड़ा सा भी बोल जाए तो हम तो बौखला जाएंगे एकदम। लेकिन जिसकी साधना अच्छी है, जब ध्यान से करता है व्यक्ति, भगवान का दर्शन करता है, ब्राह्मूर्त में उठता है, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ता है और सेवा में लगता है, तो आप अपने आप ही देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर जो है सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, डिटर्मिनेशन अपने आप बढ़ेगा अटेंटिव चैंटिंग से। महाराज ने भी एक बार बताया, अटेंटिव चैंटिंग से आपका डिटर्मिनेशन बढ़ता है, कीर्तनीय सदाहरी। इसलिए जब भी समय मिलता है हमें दो कार्य करने चाहिए, या तो हम श्रवण करें या अधिक से अधिक हम लोग हरिनाम लें। हम लोग सोचते 16 वाला जो है अल्टीमेट गोल है हमारे लाइफ का, है ना। तो जब भी हमें समय मिलता है, खाली समय मिलता है, ट्रैवलिंग में समय मिल रहा है, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप माला लेके शुरू करें चैंटिंग। तो चैंटिंग करने से क्या होगा, हमारे अंदर हमें स्ट्रेंथ मिलेगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा, ऐसे ऑड सिचुएशन को फेस करने के लिए हमें बहुत बड़ा क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा। लोग क्या करते हैं, जप माला लेते हैं, 16 माला पूरी करते हैं या नहीं भी करते हैं, साथ में नरसिंह कवच होता है, कुछ लोग यहां पहनते हैं, कुछ लोग यहां पहनते हैं, माला पूरी नहीं हो रही लेकिन नरसिंह कवच जरूर है साथ में। सबसे बड़ा कवच है हरिनाम कवच, और इस हरिनाम कवच में सारे कवच है, इसमें नारायण कवच भी है, इसमें नरसिंह कवच भी है, दुनिया भर के सारे कवच इस बीड बैग के अंदर है, लेकिन वो विश्वास नहीं है, उतनी श्रद्धा नहीं है, इसलिए नरसिंह कवच का सहारा लेते हैं। नरसिंह कवच का तब लाभ मिलेगा जब हम अपनी संख्या पूरी करेंगे या ध्यान पूर्वक जब करेंगे। जब यही नहीं हो रहा तो कौन सा कवच हमें बचाएगा। तो ये सब पवित्र लगाते हैं, कोई माला के रूप में पवित्र पहनते हैं या कवच लगा लेते हैं, लेकिन जप नहीं हो रहा बस, तो कवच तो लगाने का फायदा नहीं है ना। इसलिए प्रभुपाद के टाइम में यह सब नहीं था, प्रभुपाद के टाइम में एक ही कवच था, हरिनाम कवच। आपने देखा है प्रभुपाद को कहीं नरसिंह कवच डालते, हमारे गुरु महाराज कहीं पहनते नहीं। महाराज स्तोत्र जरूर पढ़ते हैं लेकिन हमेशा हरिनाम जरूर लेते हैं साथ में। हमारे महाराज हमेशा माला करते हैं, आप देखेंगे जब भी महाराज को खाली समय मिलता है हाथ एकदम से चले जाता है बीड बैग में। महाराज के ट्रैवलिंग में आप जाएंगे, यहां से लुधियाना 6 घंटे जाएंगे, पूरे रास्ते 6 घंटे लगातार जब करेंगे महाराज। यहां से जितने लंबे लंबे फ्लाइट्स होते हैं महाराज के, 8 घंटे 10 घंटे की फ्लाइट, लगातार 8-10 घंटे जब चलेगा महाराज का। ये वैष्णव का लक्षण है। तो जब जब की संख्या से जब से ही पता चल जाता है हमारा स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड क्या है। किसी मंदिर में अगर आप जानना चाहते हैं, जाके देखना चाहते हैं कि भक्तों का स्टैंडर्ड क्या है, आप उस जब के समय चले जाइए, बस आपको पता जाएगा टेम्पल का स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड क्या है। प्रभुपाद ने कहा पल्स है पूरे टेम्पल का चैंटिंग, चैंटिंग का टाइम चले जाइए, आपको पता जाएगा टेम्पल का स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड क्या है। तो इसलिए बहुत हमें आवश्यक है कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जैसे हमने पहले बताया उसको बड़ी गंभीरता से लें, तो फिर ऐसे ऑड सिचुएशन में हमारे जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस का पावर बढ़ जाएगा, डिटर्मिनेशन बढ़ेगा हमारा। आखिरी प्रश्न, समय हो गया। विनम्रता का मतलब है कि आप अगर सही भी हैं और गुरु या वैष्णव कहें कि आप गलत हैं तो आपको मानना होगा कि वो गलत है। क्या असर इस बात को, विनम्रता का अर्थ है मान लो कि मैंने एक कार्य किया जो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे और सही भी है, लेकिन गुरु कहते हैं वैष्णव कहते हैं ये गलत है, और आप मानते हैं स्वीकार करते हैं हाँ ये गलत है, वो विनम्रता है। मुश्किल है ना, मुश्किल तो है ही। ह्यूमिलिटी जो वर्ड है, ह्यूमिलिएट करते हैं ना, ह्यूमिलिएट का बोलते हैं ना इंग्लिश में, ह्यूमिलिएट किया, ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, तो उस व्यक्ति को इस तरह मतलब इस तरह गिरा दिया कि वो बस कहीं मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहा। तो कहने का अर्थ यह है कि उस अवस्था में भी जो है वो भक्ति को क्या करेगा, सहन शक्ति नहीं गवाएगा और लगेगा ठीक है ये भी कृपा है, अगर वैष्णव खुश है इसमें कि मैं गलत हूं तो ठीक है मैं गलती हूं, नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान कुछ भी नहीं होगा, लाभ पता क्या होगा, फिर आप हरिनाम ले पाएंगे। अगर हम हमेशा हरिनाम लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये सब गुण है जो महापुरुष ने बताया शिक्षाष्टकम के 3rd श्लोक में। ये कविराज गोस्वामी कहते हैं इस श्लोक को माला बनाकर हमें गले में लटकाना चाहिए। तो ये धीरे धीरे आते हैं गुणे, और ये गुण सब आते हैं जब हम गुरु के चरणों में शरणागत होते हैं। जितना अधिक हम शरणागत होते जाएंगे उतना अधिक हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, नम्रता बढ़ती जाएगी। प्रैक्टिस में थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रयास करना पड़ेगा ना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। नहीं, विनम्रता का मतलब ने बताया ना, अगर हम सही भी है, वैष्णव बोलते हैं गलत है, तो उसको स्वीकार करना है कि हाँ मैं गलत हूं। मान लीजिए आपने बहुत अच्छा डीटी वर्शिप किया, बहुत बढ़िया श्रृंगार किया, और आप सोच रहे हैं बहुत बढ़िया श्रृंगार हुआ आज, और झट से गुरु आते हैं वैष्णव आते हैं बोलते हैं ये कैसे श्रृंगार किया है, तो ठेस पहुंचेगी ना आपको। तो उसमें स्वीकार करना होगा, हाँ गुरु महाराज ठीक कह रहे हैं, आज श्रृंगार ठीक नहीं हुआ, तो उसके लिए नम्रता चाहिए, वो नम्रता है। तो ये नम्रता है, नम्रता का मतलब यह है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना, नम्रता का मतलब यह है कि गुरु की इच्छा के अनुसार सेवा करना, वैष्णव की इच्छा के अनुसार सेवा करना, यह नम्रता है। और नम्र यह नहीं केवल हम वैष्णव के सामने नम्र है, हमें नम्र सबके साथ रहना पड़ेगा, तभी हम प्रचार कर पाएंगे। सफल प्रचारक वो है जो हर परिस्थिति में नम्र रहते हैं और सहनशील रहते हैं, इसलिए प्रभुपाद सफल रहे, है कि नहीं। एक व्यक्ति था ना जो बंगाली था, वो प्रभुपाद महाराज कई बार उदाहरण देते हैं, तो प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, अचानक वो असेंबली में खड़ा हो गया एकदम से, और प्रभुपाद की ओर देखकर प्रभुपाद के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो प्रभुपाद चुपचाप सुनते रहे, प्रभुपाद ने एक भी शब्द नहीं बोला। प्रभुपाद के शिष्य तो उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे, तो प्रभुपाद ने मना किया। तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपने कुछ कहा क्यों नहीं, वो तो आपके लिए ऐसे ऐसे सब बोल रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा मेरे पिछले जन्म के कर्म होंगे, मैंने उसको कुछ कहा होगा इसलिए मुझे कह रहा है वो। और बाद में उस व्यक्ति ने ऐसा रियलाइज किया, कहने के बाद उसको झटका तो लगा होगा जब प्रभुपाद को उसने ऐसा बोल दिया, तो उसका तो झटका लगा उसको, अगले दिन आके खुद आके उसने माफी मांगी प्रभुपाद से। ये तो जब सहन करते हैं ना और नम्र बने रहते हैं, तो फिर वहां ठाकुर जी बैठे हैं, वो एक्शन लेंगे। पर अगर आप सही हैं तो इतना मतलब क्या कहते हैं आश्वासन ले लीजिए कृष्ण से, राधा पारसार्थी से, या आपके जो इष्ट हैं उनसे आप आश्वासन ले लीजिए कि कृष्ण निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेंगे, अगर आप सही हैं तो। अगर आप सही हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैं गलत हूं, तो कृष्ण देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भक्त कितना नम्र है, अपनी इसके ये सही होते हुए अपनी गलती मान रहा है, ये गलत है, ये सही है फिर भी आप मान रहा है कि गलत है, तो उससे क्या, वो देखकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और ऐसे भक्त की भगवान रक्षा करते हैं फिर, है कि नहीं। नहीं रक्षा नहीं, वो दूसरा रक्षा नहीं है, वो जो अपनी सहायता करता है, रक्षा नहीं। मतलब सहायता का मतलब है कि हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा, हम ये नहीं कह सकते कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, जब भी हमारे लिए कृष्ण करेंगे, दीक्षा के उपरांत गुरु जब करेंगे हमारे लिए सोलह वाला, ठीक है। हरे कृष्ण, अगली बार श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।